प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, बैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रगटोगे रात मेरे हृदय में प्यार बन कर, हृदय में प्यार बन कर, हर रागिनी की धुन पर स्वर बन के उठा करना, हर रागिनी की धुन पर स्वर बन के उठा करना, बैकुंठ तो यही है फिर हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, नाचेंगे मोर बनकर हे श्याम तेरे द्वारे, घनश्याम छाए रहना बन कर के मेघ तारे, बन कर के मेघ तारे, अमृत की धार बन कर प्यासों पे दया करना, अमृत की धार बन कर प्यासों पे दया करना, बैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, दिन अपनी शरण में ले लो ना रज के वासी ना रज के वासी तुम हो हम शरण बन कर प्राणों पे रहा करना तुम सो हम शब्द बन कर प्राणों में रहा करना वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना
श्री राधे श्री राधे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव दया कर दे हम ध्यान धरे तेरा तेरा हम ध्यान धरे तेरा। गुरुदेव दया कर दे हम ध्यान धरे तेरा तेरा हम ध्यान धरे तेरा। दासों को यही वर दे हम ध्यान धरे तेरा तेरा हम ध्यान धरे तेरा तेरा हम ध्यान धरे तेरा। जीवाने इन ब्रह्म मुहूर्तों पर यह नींद जीवाने निपटा कर सब बातें फिर स्नान किया हमने निपटा कर सब बातें फिर स्नान किया हमने इस कारण चल भागे हम ध्यान धरे तेरा तेरा हम ध्यान धरे तेरा। गुरुदेव दया कर दे हम ध्यान धरे तेरा तेरा हम ध्यान धरे तेरा। आसन पे कुछ फूल चढ़ाए हैं, इस निर्मल आसन पे कुछ फूल चढ़ाए हैं, तन मन से किया वंदन बड़े भाग से पाए हैं, मन मत भया अब तो हम ध्यान धरे तेरा तेरा, हम ध्यान धरे तेरा, गुरुदेव दया कर दे हम ध्यान धरे तेरा तेरा, हम ध्यान धरे तेरा, शांति में वह जलता है दिया, गंभीर प्रशांति में वह जलता है दिया, टुकड़ा तक आसन पे निज प्रकाश मैं पाया, भग ज्योत जले हर दम हम ध्यान धरे तेरा तेरा, हम ध्यान धरे तेरा तेरा, हम ध्यान धरे तेरा, दासों को यही वर दे हम ध्यान धरे तेरा तेरा, हम ध्यान धरे तेरा तेरा, हम ध्यान धरे तेरा,
गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे,
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे,
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे,
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे,
नर नारायण मिलकर भगवत गीता कहलावे,
नर नारायण मिलकर भगवत गीता कहलावे,
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे,
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे,
भरत वंश का कौरव वर्णन,
भरत वंश का कौरव वर्णन,
भीष्म पितामह व्रत परिपालन,
भीष्म पितामह व्रत परिपालन,
हस्त विदुर का पवित्र जीवन,
हस्त विदुर का पवित्र जीवन,
सर्पसत्र में वैशंपायन मुनि हरि यश गावे,
जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे,
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे,
कर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे,
कर नारायण मिलकर भगवत गीता गावे।
नलदमयंती सुरम्य वार्ता
नलदमयंती सुरम्य वार्ता
गुरुकुल कलह भयानक गाथा
गुरुकुल कलह भयानक गाथा
विपदाओं में श्रीहरि दाता
विपदाओं में श्रीहरि दाता
पतिव्रता सावित्री अम को जीत कीर्ति पावे
पावे।
जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर
मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
धर्मराज का स्वधर्म पालन
धर्मराज का स्वधर्म पालन
भीमार्जुन का दुष्ट निबंधन
भीमार्जुन का दुष्ट निबंधन
अभिमन्यु का व्यूह विभेदन
अभिमन्यु का व्यूह विभेदन
हरी सभा में पांचाली पर कृष्ण कृपा होवे।
हरी सभा में पांचाली पर कृष्ण कृपा होवे।
जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जहाँ धर्म है कृष्ण वही है
जहाँ धर्म है कृष्ण वही है
सत्य धर्म की सदा विजय है
सत्य धर्म की सदा विजय है
यही सिखावत व्यास देव है
यही सिखावत व्यास देव है
सज्जन संकट सागर लांघे सुख शांति पावे।
सज्जन संकट सागर लांघे सुख शांति पावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। नर नारायण मिलकर भगवत गीता गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
पाप मुक्ति व्यामोह निवारण
पाप मुक्ति व्यामोह निवारण
पुण्य विवर्धन कविवर जीवन
पुण्य विवर्धन कविवर जीवन
वेद सार संताप विनाशन
वेद सार संताप विनाशन
श्रवण करे जो धर्म संपदा विजयश्री पावे।
श्रवण करे जो धर्म संपदा विजयश्री पावे।
भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव
मंगलमय परमात्मा की असीम कृपा से ब्रह्मलीन प्रतस्मरणीय पूज्य श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के नाम से मंडित इस स्थान में आज मुझे लगता है पहली बार महाभारत की कथा का शुभारंभ हो रहा है। हम सभी का सौभाग्य है, मेरा विशेष रूप से मैं सौभाग्य मानता हूं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय माता जी यहां पर हम लोगों को शुभकामना देते हुए आशीर्वचन प्रदान करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम अवश्य चाहेंगे कि स्वामी चरण हम लोगों को मार्गदर्शन करें, हमें कैसा श्रवण करना चाहिए, कैसा मुझे कथन भी करना चाहिए और हमारा यह संपूर्ण आयोजन सफल हो, इसके लिए आशीर्वचन की याचना करता हुआ तीनों मूर्तियों से प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। आप क्या बोलेंगे? संयोजक पहले बोलते हैं, ऐसी पद्धति है। मैं तो यहां पर वक्ता के रूप में बैठा हूं, लेकिन ऐसा हुआ कि कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तब मैंने सोचा कि यहां के न्यास मंडल ने मुझे न्यासी के रूप में भी बुलाया है, इसलिए ये काम भी मुझे ही करने का उन्होंने कहा होगा।
दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु ओम शांति शांति शांति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है, श्री प्रेमपुरी आश्रम में इस वर्ष ये सुंदर आयोजन करने का प्रयत्न और सफल आयोजन के लिए आप लोगों ने ये सब प्रयत्न किया है और इस कथा के प्रवक्ता हमारे परम श्रद्धेय गोविंद देव गिरी जी महाराज इस उपलक्ष्य में दीप प्रज्वलन के लिए मात्र हम लोगों को यहां पर आमंत्रित किया गया था, परंतु और एक काम दिया, साथ साथ में दीप प्रज्वलन के लिए हमारी श्रद्धेया महामंडलेश्वर संतोषी माताजी, हमारे स्वामी देवानंद जी और यहां इस आयोजन के आयोजक हम सब लोग, उसमें मैं भी हूं, उसमें स्वामी जी जो यहां पर विराजमान हैं व्यासपीठ पर वो भी हैं, हमारे समस्त दृष्टिगण, हम लोगों की ओर से ये महाभारत का कथा का आयोजन यहां पर प्रारंभ हो रहा है। एक बात ये आई है कि जो भी हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं वो सब कुछ महाभारत से है। जो जगत में जो कुछ देखने में आता है अगर वो है कहीं से तो महाभारत से है। जो महाभारत में है वो दुनिया में है, और जो दुनिया में है वो महाभारत में है। इस प्रकार का जो महाभारत ग्रंथ, यद्यपि ये प्रचलन नहीं है कि श्रीमद् भागवत होती है, रामायण होती है, अन्यान्य महापुराण होते हैं, परंतु श्रीमद् महाभारत की कथा कहीं प्रचलन में नहीं है। इसका कारण है कि बहुत बृहद ग्रंथ, जिसमें लाखों श्लोक और संपूर्ण जगत की कथा इस महाभारत में आती है। और महाभारत का मतलब यह है कि हम लोग केवल उस युद्ध के नाम से जानते हैं जो महाभारत हुआ था, परंतु महाभारत में कौन सी बातें हैं, अगर ये जानना है तो महाभारत को समझना पड़ेगा। भारत, यही शब्द अत्यंत गूढ़, रहस्यमयी और अपने आप में अद्भुत है। भा का मतलब होता है ज्ञान, तेज, और रथ, जो लोग भारत में रहते हैं वो ज्ञानमय गंगा में हमेशा गोते लगाते रहते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं ऐसा। और उसमें भी महाभारत, जब महाभारत में अनेक कथाएं हैं, परंतु महाभारत एक महान समुद्र है, और उस महाभारत के मंथन से एक हम लोगों के सामने एक बहुत अमृत स्वरूप एक ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, विष्णु सहस्र नाम कहते हैं। ऐसे अनेक ग्रंथ हमारे सामने यहां पर आए, हम लोग उसका आधार लेकर के उसको अपने जीवन में उतारते हैं, और जीवन में उतार करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत का जिसने मंथन किया हो, जिसने उसका चिंतन किया हो, जिसने अध्ययन करके अपने जीवन में यथार्थ रूप से उस श्रीमद् भागवत को कहीं ना कहीं अपने हृदय में बिठाया हो, अभी हम लोगों में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने महाभारत का एक पर्व भी नहीं पढ़ा होगा, परंतु जो वक्ता बैठे हुए हैं इन्होंने संपूर्ण महाभारत को पढ़ा होगा, उसका चिंतन किया होगा, और ये 9 दिन में आपको महाभारत के कुछ ही प्रसंग पर उसका तत्व और तत्व के साथ में उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, ये स्वामी जी महाराज आपको 9 दिन में और प्रतिदिन केवल 3-3 या 4-4 घंटे में आपको बताने वाला है। जब तक हम उस बात को समझेंगे नहीं, जब हम उसको जानेंगे नहीं, तब तक हम दूसरे को नहीं बता पाते। तो आज इस प्रसंग को लेकर के आज महाभारत की यहां पर कथा प्रारंभ हो रही है। इसमें एक बहुत सुंदर एक वाक्य है, धर्म का स्वरूप क्या है, इसको प्रतिपादित करने के लिए एक ही वाक्य पर्याप्त है। महाजनो एन गतास पंथा, ये राजा युधिष्ठिर ने ये वाक्य कहा है। धर्म का स्वरूप क्या है, हम लोग यहां पर तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, श्रुति अलग अलग बातें कहती है, ऋषि मुनि अलग अलग अपने बात कहते हैं, तो इसका धर्म का स्वरूप क्या। महाजनो एन गतास पंथा, जो जो महापुरुष जो जो कर्म करते गए, जो रास्ता दिखलाते गए, वो धर्म का स्वरूप होना चाहिए, ऐसा माना जा सकता है। तो हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, किस धर्म का हम लोग अनुसरण करते हैं, ये अगर देखा जाए तो महाराज जी जिस बात को कहने वाले हैं वो महाभारत में आई है। महाभारत में क्या आया, महाभारत में हम लोग प्रतिदिन यहां पर पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम नारायण स्वयं, वो उस महाभारत में कही हुई जो गीता है उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, और उस गीता को उपदेश के द्वारा इस संपूर्ण जगत में अगर किसी ने उस गीता को प्रचारित प्रसारित किया, उसके पीछे होते संत महापुरुष। इस महानगर में भी एक ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने गीता के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, मर्मलीन प्रेमपुरी जी महाराज आए और उन्होंने मार्ग बतलाया। इस मोहमयी नगरी में, व्यापारियों के क्षेत्र में, कि आपके जीवन में अगर कुछ आपको यथार्थ पाना है तो आप इस मार्ग पर चलिए और वो धर्म का मार्ग है। तो मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप लोग 9 दिन में बहुत कुछ सुनेंगे, परंतु हमारे जीवन में धर्म आना चाहिए। और धर्म कैसा हो, श्रीमद् भागवत में आया है, धर्म कपट वाला नहीं होना चाहिए, निष्कपट धर्म का स्वरूप होना चाहिए, कपट के लिए धर्म नहीं होता है। तो यहां पर भी ये जिस मंच से जो प्रतिदिन स्वाध्याय प्रवचन होता है वो आपको कपट रहित, थोड़ा बहुत हमारे में कोई कपट होता है, उस कपट को, उस संशय को दूर करने के लिए ऐसे कार्यक्रम होते हैं। तो अब मैं नहीं कहूंगा कि आप यहां आए, आपको हमने बुलाया, तो पिछले बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय किया था कि हमारे जो श्रद्धेय स्वामी जी हैं उनको भी यहां पर ट्रस्टी बनाया जाए और हमारे संपूर्ण ट्रस्ट मंडल में उनको यहां पर ट्रस्टी लिया है। अब ये नहीं कह सकते कि मैं प्रेमपुरी के लिए आया हूं, ये वो कहेंगे कि मैं अपने कार्यक्रम के लिए आया हूं। तो आप ये नहीं समझना कि यहां पर किसी प्रकार का कोई, ये सब अपना कार्य। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि अपने लोगों के बीच में अपने द्वारा ये किया हुआ कार्य हम लोग करते हैं। तो इस अवसर पर यहां पर प्रतिवर्ष माता जी भी आती हैं और मुझे डालमिया जी ने कहा था कि आपको यहां पर दीप प्रज्वलन के लिए, हमने कहा एक दीप प्रज्वलन करना, दो दो लोगों की क्या जरूरत है। फिर भी कल जहां पर माता जी का आश्रम है उनके बराबर हमारे, उनके सामने हमारा आश्रम है हरिद्वार में, कल मैं वहां था और हमने कहा कि पड़ोसी वहां है और यहां पर भी साथ साथ काम करे करना चाहिए, इसलिए मैं खास वहां से कल सायंकाल यहां पर आया। और हमारे महाराज जी, तो महाराज जी को क्या कहना, अपने धर्म की बात, धर्म के लिए क्या करना चाहिए, कितना प्रयत्न करना चाहिए, हम लोग कभी कभी साथ में होते हैं, वो बात विस्तार से कभी बात कहेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो आज का ये प्रसंग आप लोग 9 दिन तक बड़े आनंद पूर्वक इसको श्रवण करेंगे, ये हमारी मंगल कामना है। और साथ साथ में एक दिन मैं और चाहूंगा, इस बार एक बहुत अच्छा कार्य हुआ जो परमात्मा को भी भाया होगा, उनको भी अच्छा लगा होगा, केदारनाथ में जो घटना घटी केदार क्षेत्र में, और मैंने एक प्रस्ताव रखा हमारे ट्रस्टियों के सामने। हमने कहा कि बहुत वस्तुओं की आवश्यकता बाद में पड़ेगी, परंतु सबसे पहले भोजन की व्यवस्था चाहिए वहां पर, और हमारे सभी ट्रस्टियों ने मेरे प्रस्ताव को माना और हरिद्वार से 3 ट्रक सामग्री लेकर के हमारे प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की ओर से वो उस तक पहुंचने में वो सक्षम हुए, और उसमें यहां से 2 कर्मचारी गए थे। तो अंतिम दिन मैं चाहूंगा कि मैं अपने संस्था की ओर से उनको मैं यहां पर सम्मानित करूंगा। अब आपने मतलब हमारी वो भी संस्था ये भी हमारी है, तो इसीलिए उनको पुरस्कार दिया होगा, परंतु उनको सम्मान, क्योंकि उस कठिन परिस्थितियों में जाकर के वहां पर उन्होंने जो कार्य किया है, तो ये प्रेमपुरी की तरफ से, प्रेमपुरी आश्रम की तरफ से बहुत सुंदर कार्य हुआ। और यहां पर लगातार हमारे प्रकाश भाई, राजेश भाई हमारे संपर्क में रहे, उन लोगों के संपर्क में रहे और वहां एक कार्य हुआ। इसी कार्य के लिए ये प्रेमपुरी आश्रम जाना जाता है, माना जाता है, और इसका एक ये छोटा सा स्वरूप था। तो अब आगे जैसे आपने कहा कि 3 महापुरुष, तो अब हमारे पूजनीय माता जी भी थोड़ा सा इस 2 शब्द इसमें कहेंगे। इसके बाद में आपको हम सामने एक हमारे ट्रस्टी, उनको यहां पर सामने आपको कह देंगे, वो और आप दोनों 9 दिन तक एक दूसरे के सामने, और इसमें मंथन, कौन सा मंथन, इसमें तो अमृत निकलने वाला है। अमृत कौन सा, आपने आपको जानने वाला, अपने को हमेशा रखने वाला ऐसा अमृत आप लोग इस महाभारत से प्राप्त करने वाले हैं। अब मैं हमारे श्रद्धे माता जी से प्रार्थना करता हूं कि आप भी इस अवसर पर दो शब्द कहें।
हरि ओम, ओम भद्रम नो अपि वाते मन, ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धे व्यासपीठासीन महाराज जी और परम श्रद्धे महामंडलेश्वर स्वामी जी, बगल में बैठे हुए महाराज जी, भगवान की असीम अहेतु की कृपा के साथ और संतों के आशीर्वाद से प्रेमपुरी इस आध्यात्म विद्या मंदिर भवन में महाभारत की कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। जैसा कि महाराज श्री ने कहा, सामान्यतः लोकोक्ति है, लोगों में एक बड़ी भ्रांति है कि महाभारत की कथा खंड खंड रूप में तो सुननी चाहिए, करनी चाहिए, परंतु पूरा संपूर्ण महाभारत एक पारायण के रूप में नहीं करना चाहिए। एक ऐसी लोकोक्ति है और इस बात का लोगों के अंदर एक भय भी है। वास्तविकता ये है कि जैसा विचार किया गया कि महाभारत एक ऐसा बृहत्तर ग्रंथ है जो कुछ आज तक हुआ है, जो हो रहा है, जो आगे होने वाला है, उस सब का वर्णन महाभारत के अंतर्गत है। जो महाभारत में नहीं वो कभी आज तक हुआ नहीं न होगा, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इतना बृहत्तर ग्रंथ है और जिस ग्रंथ के लिए ये भी कहा जाता है कि स्वयं व्यास जी महाराज जब इस ग्रंथ की रचना कर रहे थे तो उन्होंने साक्षात गणेश जी का आवाहन किया और गणेश जी से कहा कि आप मेरे इस कार्य में साथ दें, सहयोग करें। तो ऐसे लोगों की मान्यता है कि गणेश भगवान स्वयं व्यास जी ने कहा मैं बोलूंगा और आप मेरे इस लेखन के कार्य को पूर्ण करेंगे। तो गणेश जी ने कहा कि मैं जब लेखनी उठाऊंगा तो अंत में जाकर उसका विश्राम लूंगा। तब व्यास जी महाराज सोचते रहे कि यह कार्य तो बड़ा कठिन है। तब व्यास भगवान ने कहा, एक ऐसा निर्णय किया कि बीच बीच में गणेश जी को विश्राम, व्यास जी को विश्राम मिले, ऐसा कुछ बोलते थे जिसे गणेश जी को समझकर लिखने में समय लगता था। अर्थात ऐसी मान्यता लोगों की लोकोक्ति है महाभारत के ग्रंथ के प्रति कि कहने का अर्थ है कि इतना कठिन ग्रंथ और इतने 9 दिन के भीतर बड़ी सरलता से उसका सार, वास्तव में महाभारत क्या है, वो आपको सुनने को मिलेगा। और एक अच्छे विद्वान महापुरुष के द्वारा यदि ऐसा ग्रंथ सुनने को मिले तो यह सब आप सब लोगों के परम सौभाग्य की बात है कि ताकि आप इस ग्रंथ को समझें और समझ करके धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। और महाभारत में इतना कुछ है जिसके लिए मैंने कहा कि जो कुछ हुआ है सभी धर्म, इसमें राज धर्म भी है, योग धर्म भी है, और योग ज्ञान भक्ति कर्म सभी कुछ महाभारत में विद्यमान है। उससे एक एक पुष्प की तरह निकालकर महाराज श्री आप सब लोगों को अपने मुखारविंद से सुनाएंगे। तो ऐसा दिव्य ग्रंथ आपको सुनने के लिए मिला है, इसे आप प्रेम से सुने और इस ग्रंथ के श्रवण में आप सब लोग परम लाभान्वित हों। और ऐसी मेरी भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना है, आप सबों के लिए शुभकामना है। अब मैं अधिक समय न लेते हुए इस महाग्रंथ को आप सुने और ऐसे में भगवान से प्रार्थना करती हूँ। हरिओम तत्सत।
इस महाग्रंथ के प्रणेता को प्रणाम करके हम ग्रंथ का आरंभ करेंगे। नमो नमस्ते व्यास गुरो।
नमो नमस्ते व्यास गुरो। नयन निगमागम कल्प करो।
जय निगमागम कल्प करो।
नमो नमस्ते व्यास गुरो।
नमो नमस्ते व्यास गुरो।
सुमधुर भगवद्गीता मन्त्रा
भगवती गाथा च पवित्रा
भगवती गाथा च पवित्रा
त्वया कुम्भिता सुकवि गुरो
त्वया कुम्भिता सुकवि गुरो कल्प करो
नमो नमस्ते व्यास गुरो
नमो नमस्ते व्यास गुरो
जय निगमागम कल्प करो
जय निगमागम कल्प करो
वेदारण्यक समारोपण
वेदारण्यक समारोपण
उपनिषदमृतो दधि निर्मथनम्
उपनिषदमृतो दधि निर्मथनम्
पुराणमन्दिर परिनिर्माण
पुराणमन्दिर परिनिर्माण
अचतुर्वदनो विश्वविधाता
अचतुर्वदनो विश्वविधाता
विदुजो हरि रसि परिपालयिता
विदुजो हरि रसि परिपालयिता
अभाल नयनो शिव संहर्ता
अभाल नयनो शिव संहर्ता
त्वमेव भगवन् विश्वगुरो
त्वमेव भगवन् विश्वगुरो
जय निगमागम कल्प करो
जय निगमागम कल्प करो नमस्ते व्यास गुरो
जय निगमागम
कल्प करो जय निगमागम कल्प करो
विश्वं सकलं व्यासोच्छिष्टं
विश्वं सकलं व्यासोच्छिष्टं
विष्टवचनमिदमर्थ
विष्टवचनमिदमर्थविशिष्टम्
सत्यं तथ्यं महतामिष्टम्
सत्यं तथ्यं महतामिष्टम्
सकलगुरूणामादि गुरो
सकलगुरूणामादि गुरो सकल गुरुणामादि गुरो
जय निगमागम कल्प करो
जय निगमागम कल्प करो
जय निगमागम कल्प करो
जय निगमागम कल्प करो नमो नमस्ते व्यास गुरो
जय निगमागम कल्प करो
व्यास भगवान की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय ज्ञानेश्वर महाराज की जय सद्गुरु देव की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय गंगा माता की जय गौ माता की जय भारत माता की जय वेदव्यास भगवान की जय महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय देवर्षि नारद भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की जय नमामि सद्गुरुं शांतम सच्चिदानंद विग्रहम पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्चवनत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् सुरासुरा सेवितपादपङ्कजा करे विराजत कमनीय पुस्तका ज्येष्ठपत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः माधुर्यरसकल्लोलाम् शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचरगुरुं हरिं प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यम् व्यासस्याद्भुतकर्मणः तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदम् सनातनम् इतिहासम् इमम् चक्रे पुण्यम् सत्यवती सुतः मंगलमय परमात्मा की हम सब लोगों के ऊपर अत्यंत महती कृपा है कि आज इस पवित्र स्थान में एक नया सूत्रपात हो रहा है। जहां तक मैंने देखा है हमारे देश में संपूर्ण भारतवर्ष में और उसमें भी जिसे मोहमयी कहा जाता है ऐसे इस विशाल नगर में वेदांत की ज्योति को निरंतर प्रज्वलित रखने वाला और उस निष्ठा को बनाए रखकर के लोगों में प्रचारित करने वाला मुझे तो केवल यह एक प्रेमपुरी आश्रम ही दिखता है, जहां पर नित्य प्रति वेदांत का पाठ होता हो। हमारे हरिद्वार के आश्रमों में, वृंदावन के, अयोध्या जी के आश्रमों में वो हो, ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन वहां पर वह होना स्वाभाविक लगता है। वहां पर वह होना
हमारी सारे विधि विधानों के साथ सुसंगत भी लगता है। लेकिन ये चमत्कार की इस मोहमयी नगरी में इस प्रकार की वेदांत ज्ञान ज्योति निरंतर जलती रहे, ऐसा उपक्रम जिस महान विभूति ने किया उसकी पावन स्तुति में मैं पहले प्रणिपात करता हूं। आप लोगों ने उसे अब तक उसी प्रकार न केवल प्रज्वलित रखा बल्कि उसके नए नए आयाम जोड़ करके उसे अधिक जनोपयोगी और सर्वोपभोग्य बनाया, यह भी बात अत्यंत बड़ी अभिनंदनीय है। किंतु मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, आज प्रथम बार महाभारत की कथा यहां पर हो रही है, यह उतना अच्छा मुझे तो नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि यह कथा तो कभी की हो जानी चाहिए थी, आरंभ से ही होनी चाहिए थी। इस कथा का श्रवण करते समय आप लोग इस बात का अनुभव करेंगे कि हमारे राष्ट्र का विनाश होने की जो बारी आज आ गई, इसका कारण हम लोगों ने महाभारत से मुख मोड़ लिया। यह है, यदि देश का उत्थान करना होगा तो पुनः इस देश में महाभारत के तेज को निर्माण करना आवश्यक होगा। मैं अपनी अवस्था के 17वें वर्ष से श्रीमद् भागवत की कथा करता आया हूं। हमारी परंपरा में 150 वर्षों से कम वही परंपरा रही है। भगवान की ऐसी कृपा रही कि पितृवंश से और मातृवंश से दोनों भी ओर से हमें तो श्रीमद् भागवत का ही वारसा मिला, लेकिन अध्ययन के साथ साथ, चिंतन के साथ साथ, महात्माओं के संग के साथ साथ जो विचार परिष्कृत होते गए उसमें एक बात ध्यान में आई कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन, श्रीमद् भागवत की कथा, यह तो निश्चित रूप से सर्वोपरि कथा है। इट्स अल्टीमेट वर्ड, नो डाउट। लेकिन वहां तक पहुंचने का हमारा अधिकार प्राप्त करने के लिए पहले महाभारत की कथा होना आवश्यक है। देखो, हम सब लोगों ने महामंत्र को तो रोज रोज सुना भी है, जपा भी है, गाया भी है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह महामंत्र है। इस महामंत्र का हमारे भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने एक लघु मंत्र बना दिया, शायद यह सोच करके भी बनाया होगा कि कलयुग में लोगों के पास महामंत्र की उतनी उपयोगिता और उतनी संभावना रहने की संभावना कम है। भागदौड़ का जीवन और वह बंबई जैसे शहरों का जीवन, यह तो आप लोग जानते ही हैं, और यह और आगे बढ़ते जाने वाला है। आज जो स्थिति है, यह स्थिति निरंतर अधिकाधिक एक्सेलरेट होती जा रही है, उसके बढ़ने का वेग भी बहुत अधिक है। उस आपाधापी के समय में लोगों को एक लघु मंत्र दे दिया जाए, इसलिए महामंत्र के ही तीन नामों को लेकर के श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने एक मंत्र दे दिया, राम कृष्ण हरि। पंढरपुर के भगवान श्री विट्ठलनाथ की आराधना मुख्य रूप से इसी मंत्र से होती है, जय जय राम कृष्ण हरि। मैं जब इस राम कृष्ण हरि का विचार करता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि यह वास्तव में केवल जप करने का मंत्र नहीं है, यह हमारे जीवन का अभ्यास क्रम है। अभ्यास क्रम, मनुष्य को स्वाध्याय करते रहना चाहिए, निरंतर अध्ययनशील जीवन उसका होना चाहिए। यदि वो निरंतर उन्नति चाहता है तो इसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए संपूर्ण अध्ययन होने के पश्चात हमारे ऋषि जब प्राचीन स्नातकों को अपने घर के लिए विदा करते थे तब उन्हें जो उपदेश किया जाता था उस उपदेश में कहते थे स्वाध्यायान मा प्रमदहा। विद्याभ्यास के समय केवल नहीं, विद्याभ्यास पूरा होकर के स्नातक घर पर लौट रहा है तब कह रहे हैं स्वाध्यायान मा प्रमदहा, पढ़ते रहना, अध्ययन करते रहना। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, बहुत सुंदर कहा कि भा आभा तेज, ज्ञान के तेज में यह राष्ट्र रत था, उसमें रममाण था, और इसलिए आजीवन पढ़ते रहना। यावत जीवम अधीते विप्रः, उत्तम ब्राह्मण का, उत्तम विद्वान का तो लक्षण यही है कि वो आजीवन अध्ययन करता रहे। तो हमारे आजीवन अध्ययन का, आजीवन श्रवण का क्रम क्या होना चाहिए? रामकृष्ण हरि यही वह क्रम होना चाहिए। आयु के 22, 23, 24 वर्ष तक उत्तम रीति से राम का चिंतन किया जाए। राम का अर्थ है रामायण, राम कथा का सबसे पहले श्रवण किया जाना चाहिए, क्योंकि राम कथा आदर्श जीवन मूल्यों की कथा है। राम कथा एक परिवार के अत्यंत घनिष्ठ प्रेम की कथा है। राम कथा मर्यादा की कथा है। ये सारी मर्यादाएं, ये सारे जीवन मूल्य, ये पारिवारिक प्रेम, इसकी भूमिका बाल्यकाल में सुदृढ़ हो जानी चाहिए। इसलिए राम कथा से नीति सीखना पहली बात। 22-24 वर्ष के पश्चात जब व्यक्ति अब अपना अध्ययन पूरा करके अपने व्यवसाय में या किसी भी तरह धनोपार्जन के क्षेत्र में उतरता है तो पहले भी रहा ही होगा और आज तो आप अनुभव ही करते हैं कि अत्यंत भीषण स्पर्धा और अनेक प्रकार की विलक्षण समस्याएं, सर्वतोमुख अनेक प्रकार की परिस्थितियां, इन सब के साथ संघर्ष करते हुए, जूझते हुए उसे आगे बढ़ना होता है। उस समय उसके पास एक ग्रंथ चाहिए, उस समय उसके पास एक विशिष्ट दृष्टिकोण चाहिए, विचार चाहिए। इसके लिए कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा का अर्थ भागवत कथा नहीं है, ध्यान रखना। भागवत कथा हरि कथा है, कृष्ण कथा तो महाभारत कथा है। संपूर्ण महाभारत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण छाए हैं। हम देखेंगे महाभारत की कथा से व्यक्ति को चाहिए कि युवावस्था में अपने कार्यक्षेत्र में पदार्पण करने से पूर्व वह महाभारत का श्रवण अवश्य करें। महाभारत से क्या सीखेगा? महाभारत से युक्ति सीखेगा। राम कथा से नीति सीखना, महाभारत से युक्ति सीखना। युक्ति का है कि युक्ति है विजय की। ध्यान ये रखना चाहिए महाभारत मूलतः विजय का ग्रंथ है। महाभारत का मूल नाम ही जय है। जयो नाम इतिहासोयम, यह जय नाम का इतिहास है। आप लोगों ने यह मंगलाचरण तो अनेक बार सुना होगा, नारायण नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ये महाभारत का मंगलाचरण है। इस ग्रंथ का नाम ही जय है। कौन नहीं चाहता संसार में विजय प्राप्त करना? विजय शब्द बड़ा लगता होगा आपको, यश, सक्सेस। हर व्यक्ति की आकांक्षा है कि मैं अपने जीवन में जो भी मेरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करूं। यदि इस विलक्षण जटिल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मुझे अपने व्यवसाय में या मुझे अपने किसी भी कार्य में यश प्राप्त करना होगा तो मुझे सबसे अधिक उपयोगी ग्रंथ यदि कोई होगा सारे संसार में, यदि सबसे अधिक उपयोगी कोई ग्रंथ होगा तो वह केवल महाभारत महाभारत और महाभारत ही है। इसको विस्तार से और बाद में देखेंगे। यह यश का विजय का ग्रंथ है। बड़ी विलक्षण बात, श्रीमद् भागवत का श्रवण किया तो क्या मिलेगा? श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से सद्गति मिलेगी, भक्ति प्राप्त होगी, भगवत प्राप्ति का अलौकिक लाभ, जीवन की कृतार्थता, ये सब श्रीमद् भागवत से प्राप्त होना है। परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुई, मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ही, लेकिन उसके पूर्व महाभारत से वह युक्ति प्राप्त होती है जिससे मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता हूं। महाभारत में लिखा, यदि कोई ब्राह्मण इसका श्रवण करेगा उसकी प्रज्ञा खिलेगी, यदि कोई क्षत्रिय इसका श्रवण करेगा वो जहां जाएगा विजयी होगा। युद्ध में जाने से पूर्व वह महाभारत का अनुष्ठान करवा करके जाए, वैश्यो धन समृद्ध स्यात्, वैश्य को व्यापार में सफलता मिलेगी, शूद्र को सारे पातक उसके नष्ट होकर के उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि किसी गर्भवती माता ने महाभारत का श्रवण किया तो क्या होगा? वीरम जनयते पुत्रम, उसे होने वाला पुत्र वीर होगा। और यदि कन्या हुई तो कन्यांच जयशालिनी, वह कन्या भी विजयशालिनी होगी। अच्छा, कितनी बड़ी दुर्भ्रांति हमारे देश में रही कि महाभारत का श्रवण करना चाहिए कि नहीं, ये तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन महाभारत की पुस्तक भी घर में रखना कि नहीं। हमारी डोसियों ने आप एक घबरामन थाय छे, पुस्तक घर में रखनी कि नहीं। अब ये सारी क्यों भ्रांतियां निर्माण हो गई यह भी मैं बाद में बतलाऊंगा, लेकिन जब मैंने महाभारत को पूरी तरह छान डाला कहीं पर भी मुझे ऐसा वाक्य नहीं मिला। उल्टे क्या वाक्य मिला बताओ? जिसके घर में महाभारत का ग्रंथ रहेगा वो जहां पर जाएगा विजय प्राप्त करके आएगा। भारतम भवने यस्य, भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जया, वो विजयी होगा। ये विजय का ग्रंथ है। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में विजय प्राप्त कराने के लिए महाभारत की ही आवश्यकता है। बालकों के संस्कार का कार्य जब हम लोगों ने आरंभ किया 26 वर्ष पहले, तब मैं हमारे कार्यकर्ताओं से कहता था, भाई विस्तार से आपको जो मुझे कहना है मैंने कह दिया है, लेकिन संक्षेप में भी आपको संस्कार का काम करना है तो इतना ही करना, आपको और कुछ नहीं करना है। केवल दो महापुरुषों की छवियां बालकों के हृदय में स्थापित कर देनी है। और ये दो महापुरुष कौन? मैं तब भी कहता था, आज भी वही कहता हूं, एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे स्वामी विवेकानंद। छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी विवेकानंद, इन दोनों की छवि को आप बालकों के अंतःकरण में स्थापित कर देंगे तो अपने आप उसकी बुद्धि जागृत हो जाएगी कि मुझे किस समय क्या करना चाहिए। यह निर्णय वो कर सकेगा। लेकिन बाद में जब मेरा और अध्ययन चलता रहा तो मेरे ध्यान में आया कि ये दोनों महापुरुष भी कैसे निर्माण हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी विवेकानंद, इन दोनों ने बाल्यकाल में महाभारत की कथा लगभग रोज सुनी है। रोज दृष्टिकोण कैसे बदलता है, दृष्टिकोण कैसे बनता है, यह इसके अत्यंत बड़े उदाहरण है। जिनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा करते हैं, भारतीय असंतोष के जनक, जिनका सिंह जैसा दहाड़ना था, वे लोकमान्य तिलक। तिलक जी से किसी ने पूछा, आपका रोल का आनी क्या है? तिलक जी ने कहा, मैं और जो कुछ करता हूं भाई, लेकिन एक बात तो बता देता हूं, महाभारत का एक अध्याय पढ़े बिना मैं कभी रहता ही नहीं हूं, मैं महाभारत रोज पढ़ता हूं। महाभारत के चिंतन से उनके जीवन में एक दहाड़ आ गई, एक तेज आ गया। यह तेज और उसके साथ साथ सफलता यदि अर्जित करनी है तो महाभारत के लिए कोई विकल्प नहीं है। महाभारत हमें वे सारी युक्तियां सिखाता है। देखो महाभारत के अध्ययन से क्यों आता है तेज, महाभारत के अध्ययन से क्यों प्राप्त होता है यश, ये विजय का ग्रंथ क्यों है, इसका चिंतन करने पर एक बात ध्यान में आती है। दानेश्वर महाराज ने इस ग्रंथ का वर्णन करते समय एक विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया और उसकी ओर मेरा ध्यान गया। उन्होंने वर्णन किया, आप लोग जानते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज का सर्वोत्तम भाष्य है भगवद गीता के ऊपर जिसका नाम ज्ञानेश्वरी है। इस ज्ञानेश्वरी के उपोद्घात में उन्होंने महाभारत का वर्णन प्रसंगानुरूप किया और वह वर्णन करते समय उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया विवेक तरु से उद्यान। विवेक तरु से उद्यान यह वर्णन उन्होंने महाभारत का किया। उसकी ओर जब मेरा ध्यान गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मनुष्य के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक ही बात की वास्तव में आवश्यकता होती है और वह बात है विवेक, सही निर्णय सही समय पर लेने की क्षमता, इसे कहते हैं विवेक। निर्णय सही होना चाहिए और निर्णय सही समय पर लिया जाना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय जिसने जिसने किया वो सफल हुआ और जिसने या तो सही निर्णय नहीं किया या वह निर्णय सही समय पर नहीं किया वह असफल हो गया, ऐसा आप देखेंगे। सही समय पर सही निर्णय करने की क्षमता एकाएक प्राप्त नहीं होती क्योंकि इसके लिए यह विवेक बड़ा सूक्ष्म होना चाहिए। एक अंग्रेजी लेखक ने विवेक की बड़ी सुंदर व्याख्या की है, मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। डिस्क्रिमिनेशन इज अ थिन बॉर्डर लाइन बिटवीन सक्सेस एंड रिस्क। डिस्क्रिमिनेशन विवेक वह एक धुंधली सीमा रेशा है जिसकी एक ओर सफलता ही सफलता है और दूसरी ओर संकट ही संकट है। संकटों की खाई एक ओर है और दूसरी ओर सफलता है, इनके मध्य में जाने वाली अत्यंत धुंधली पतली सी सीमा रेशा उसे विवेक कहते हैं। और ये विवेक हमारे भीतर यदि जागृत हो तो निर्णय गलत नहीं होंगे, निर्णय सही समय पर होंगे और यदि वैसा हुआ तो मनुष्य अपने आप ही सफलता की ओर आगे बढ़ता जाता है। मुख्य प्रश्न यह है इस विवेक को जागृत कैसे किया जाए। इस विवेक को जागृत करने के लिए जिस प्रकार का वास्तव में सत्संग करना चाहिए वह व्यावहारिक धरातल पर सर्वोत्तम सत्संग महाभारत का ही है, क्योंकि जब जब मनुष्य को संसार में काम करना होता है उसे लोगों के साथ व्यवहार करना होता है, लोगों के साथ व्यवहार करते समय मैं गलती कर जाता हूं जब मैं किसी व्यक्ति को सही ढंग से पहचानता नहीं, वो है कुछ और मैंने मान लिया कुछ और। अरे आप देखेंगे सीधी सादी बात, हमारे प्रधानमंत्री बस लेकर के लाहौर गए, प्रसंग आप जानते हैं सारी दुनिया जानती है, शांति वार्ता करने के लिए गए, अच्छा काम किया बुरी बात नहीं थी, ऐसे प्रयास करने चाहिए। लेकिन वो ये पहचान नहीं पाए कि सामने वाला शत्रु इतना दुष्ट है कि एक ओर जब मैं मैत्री का हाथ आगे बढ़ा रहा हूं दूसरी ओर वह कारगिल में मेरे देश के ऊपर हमला कर सकता है। लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है क्योंकि लोग मुखौटों से भरे हुए होते हैं, इसलिए इस संसार के सारे लोगों का म्यूजियम यदि आपको कहीं देखने मिलेगा तो ये महाभारत में देखने मिलेगा। एक भी अच्छे से अच्छा व्यक्तित्व और बुरे से बुरा व्यक्तित्व एक भी ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं जिसका मूल आपको महाभारत में नहीं मिलता। संसार में जितने प्रकार के स्वभाव हैं सभी के सभी आपको महाभारत में मिलेंगे और अच्छे से अच्छा मिलेगा, बुरे से बुरा भी मिलेगा, अच्छे से अच्छा भी गलती कर सकता है यह भी मिलेगा और बुरे से बुरे में भी कोई कोई एकाध सद्गुण हो सकता है यह भी मिलेगा। इट्स अ क्लियर वर्ल्ड। ये संसार बड़ा विचित्र है, परिपूर्ण शुद्ध, परिपूर्ण सही, ऐसा कुछ इस संसार में नहीं है, परमात्मा में है। और ये सारा यदि कार्य करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जानेगा नहीं तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठेगा। अब उन सारे के सारे व्यक्तित्वों का अभ्यास मैं कहां कर सकता हूं? ये सारे के सारे पात्र आपको महाभारत में मिलेंगे। महाभारत के ये जो पात्र है, धर्मराज केवल इतिहास की व्यक्ति नहीं है, धर्मराज जैसे लोग आज भी आपको मिलेंगे, दुर्योधन जैसे लोग आज भी आपको मिलेंगे, शकुनी मामा जैसे लोग आज भी आपको मिलेंगे, कर्ण जैसे लोग आज भी आपको मिलेंगे, भीमसेन जैसे लोग आज भी आपको मिलेंगे। मेरे सामने आने वाला हर व्यक्ति किस कैटेगरी में बैठता है, उसको देख करके उसके साथ मुझे किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसका कौशल्य हमारी बुद्धि में आने के लिए सबसे पहले इस महाभारत को जान लिया जाना चाहिए। लॉ की भाषा में बोलूं तो ये सारी केस स्टडीज है, ये अनेक प्रकार के केसेस हैं, और इस इन ऑल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ यू विल फाइंड हियर। मनुष्य के जीवन में कितने प्रकार के पेचीदे प्रसंग खड़े हो सकते हैं, कभी कभी भूल किसी व्यक्ति की होती ही नहीं है, गड़बड़ी हो गई। अब बतलाइए, एक कर्ण का प्रसंग है, कर्ण के प्रसंग में किसकी गलती बताएंगे आप? कुंती की गलती थी या दुर्वासा की गलती थी जिन्होंने मंत्र दिया, या सूर्य भगवान की गलती थी, या कर्ण की गलती थी, किसकी गलती थी? इट्स सर्कमस्टांस, कार्लाइल कहते हैं सर्कमस्टांस। कभी कभी परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाती है कि उसका भांडा किसी एक के ऊपर फोड़ा नहीं जा सकता, द सिचुएशन। इन सारी बातों को जो व्यक्ति समझेगा वही सभी को न्याय भी दे सकेगा और सही निर्णय सही समय पर ले भी सकेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के निर्णयों को देखो, स्वामी विवेकानंद महाराज के जीवन के निर्णयों को देखो, तो सारी बातें आपके ध्यान में आ जाएगी और ऐसा पूरे इतिहास में देखने मिलेगा। अब बात यह है कि इस विवेक को हमारे भीतर जागरूक करने के लिए हमारे पास उपाय क्या है। रियली स्पीकिंग, इट्स अ ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोग्राम ऑफ भगवान वेदव्यास महामुनि। ये महाभारत क्या है? ये महाभारत पढ़ते समय हम लोगों को केवल उसने क्या किया, उसने क्या किया, अब वो जानकर के आज क्या लाभ है, ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। इट्स अ ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोग्राम। यहां पर इन सब केसेस को देखते हुए इसका अल्टीमेट उद्देश्य यह है कि हमारी बुद्धि में वो क्षमता जागृत हो जाए, हमारे भीतर वह विवेक जागृत हो जाए। उस विवेक की जागृति के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, महाभारत विवेक का वृक्ष नहीं है। वे कहते हैं विवेक तरुण से उद्यान, वे कहते हैं विवेक के वृक्षों का यह बगीचा है। इतना विवेक आपको यहां पर मिलेगा जितना संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और मैं बंबई के श्रोताओं के, सुबुद्ध श्रोताओं के और प्रेमपुरी के श्रोताओं के सामने बैठा हूं, मुझे इसका पूरा भान है। लेकिन महाभारत जैसा ग्रंथ आप कोई पूरे संसार में मुझे दिखा दें तो मैं उसका अध्ययन करने लग जाऊंगा, थैंक करूंगा आपको, लेकिन ऐसा है नहीं। मूल बात ऐसी हो गई कि हम लोगों ने इसकी जो उपेक्षा की वह अक्षम्य उपेक्षा रही है। पहली बात पूरी करूंगा। इसलिए संघर्ष के सामने खड़े होते ही 24-25 वर्ष के समय व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए महाभारत का। इसके पश्चात यदि वो महाभारत का अध्ययन करता रहेगा, रोज थोड़ा थोड़ा करता रहेगा, सिद्धांतों को जानता रहेगा, ही विल नेवर फेल, वो सफल ही सफल होकर के रहेगा। यह विजय की गाथा है। सभी प्रकार की स्थितियों में से भी मैं मार्ग निकाल करके ऊंचा कैसे उठ सकता हूं, ये सारे मार्ग आपको इस एक ग्रंथ में मिलेंगे। और तो और बात देखेंगे, लेकिन इतना सब होने के पश्चात, यदि इतना सब होने के बाद हमें यश भी मिला, खूब सफलता भी प्राप्त हुई, संपत्ति भी मिली, सत्ता के पद भी हमने प्राप्त की है, अंत में एक बात और जाननी पड़ती है, ये सब प्राप्त करने के लिए जो युक्तियां हैं, जो शक्ति है, वो महाभारत से मिलती है। लेकिन कितने भी ऊंचे पद मिले, कितनी भी संपदा मिली, और कितना भी बढ़िया परिवार मेरा रहा और मैंने अपना स्थान कैसा भी बनाया, एक तो बात सत्य है कि इस संसार को छोड़कर के एक दिन जाना है। मनुष्य का मन विचलित होता है, इसलिए 55-60 के होने के साथ साथ श्रीमद् भागवत की ओर मुड़ करके भक्ति प्राप्त करे, उससे मुक्ति प्राप्त कर ले और मनुष्य के जीवन को कृतार्थ कर ले। यह है मानव जीवन का अभ्यास क्रम। राम कथा से नीति सीखना, महाभारत की कथा से युक्ति सीखना और भागवत की कथा हरि कथा, राम कृष्ण हरि, हरि कथा से भक्ति और मुक्ति को प्राप्त करना मनुष्य के जीवन की सफलता का यह मूल मंत्र है राम कृष्ण हरि। इसका और आयाम है, उसको भी देखेंगे। जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम
कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
भारतं भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः। रामकृष्ण हरि यह हमारे संपूर्ण जीवन का अभ्यास क्रम है। इस क्रम से ग्रंथों का अध्ययन किया जाए। आए दिन श्रीमद् भागवत की कथा करता आया हूं और भागवत की कथा में रोज ही यह कहता आया हूं कि इसके जैसा कोई ग्रंथ ही नहीं है। अंतिम ग्रंथ तो यही है। महाभारत के व्यासपीठ पर बैठकर के भी वही बात बोल रहा हूं कि अंतिम ग्रंथ तो श्रीमद् भागवत है, लेकिन एकदम से कूद करके अंतिम ग्रंथ की ओर जाने की क्या आवश्यकता है? उसके पहले भी तो कुछ है, उसको भी जानो। हम एकदम कूद करके जब बात करते हैं तो गड़बड़ी होती है। धर्म का क्या लक्षण वाली परंपरा ने मान्य किया है। यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिस्स धर्मः, संपूर्ण धर्म को जानने के लिए दो बातों की आवश्यकता है, अभ्युदय भी जानना चाहिए और निःश्रेयस भी जानना चाहिए। अभ्युदय कहते हैं भौतिक उन्नति को, समृद्धि को, और निःश्रेयस कहते हैं मानसिक शांति को, आंतरिक सद्गति को, मुक्ति को। केवल निःश्रेयस की बात करना धर्म नहीं है, उसके पहले अभ्युदय होना चाहिए, क्योंकि हमारा वैदिक धर्म ऐसा है उसने अभ्युदय की बात के बिना निःश्रेयस की बात को नहीं स्वीकारा है। भगवान मनु ने मनुस्मृति में एक बात कह दी, हरेक व्यक्ति को उठकर के मुक्ति की बात नहीं करनी चाहिए। मनु कहते हैं ऋणत्रयम अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशये, मनुष्य के ऊपर जो ऋण है उनको बिना चुकाए यदि वह मुक्ति की बात करेगा तो गलती कर बैठेगा। मैं इस संसार में आया, मेरे ऊपर देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, महाभारत में तो एडिशनल और एक ऋण है, मनुष्य ऋण, समाज का ऋण, हम भूल नहीं सकते। धर्म के अंतर्गत महाभारतकार ने इस बात को लाया है। और ध्यान रखना, महाभारत एक ऐसा लोक वेद है, चारों वेदों का सारभूत ज्ञान इस एक ग्रंथ में उपलब्ध है, चारों वेदों का सारभूत ज्ञान। थोड़ा सा निचले स्वर में एक बात और बोल देता हूं, आप गलत मत मानना उसको। चारों वेदों की उपलब्ध संहिताओं का भाषांतर आप पढ़ जाइए, आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो एक महाभारत को पढ़ने से प्राप्त होगा। चारों वेदों की उपलब्ध संहिताओं का अनुवाद आप पढ़ जाइए, मैंने पढ़ा ऐसा कहना तो अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने देखा तो है। लेकिन जो ज्ञान महाभारत में प्राप्त होगा वो उसमें नहीं होगा, इतना ज्ञान इसमें भरा। इसीलिए तो भारतम पंचमो वेदः, महाभारत को पांचवा वेद कहा गया। और भगवान वेदव्यास जी ने, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, एक वेद का चार भागों में विभाजन किया, उन्होंने स्वयं इसे महाभारत को पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया। ये पांचवा वेद है, ये लोक वेद है। इतनी सरल भाषा में ये हम लोगों के सामने आया है वेद के ज्ञान में। अभ्युदय का विचार पहले है, फिर निःश्रेयस का विचार है। आप भी सोचिए ना, लर्न गो नेचुरली। एक व्यक्ति को धर्म की बातें दूर रखो, लेकिन एक व्यक्ति को पहले अपने जीवन में बाहर की सफलता चाहिए कि स्वयं की आत्मशांति चाहिए? वो कभी भी पहले भैया मुझे अच्छी रोटी मिलनी चाहिए, अच्छा मेरा मकान होना चाहिए, अच्छा मेरा व्यवसाय चलना चाहिए, मुझे समृद्धि प्राप्त होनी चाहिए, सत्ता के पद मिलने चाहिए, मेरे चारों ओर मुझे अनुकूलता दिखनी चाहिए, यह आदमी सोचेगा कि नहीं? अब बंबई के लोगों को मैं ये बताऊं इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो हर कोई सोचेगा। पर इसका विचार हमारे धर्मों में पहले आया अभ्युदय, और फिर निःश्रेयस आत्मशांति की बात। अब आप जरा देखिए, तुलना कीजिए महाभारत में और श्रीमद् भागवत में, दोनों ग्रंथ अपने अपने स्थानों पर कैसे श्रेष्ठ है देखिए। आप श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध को यदि आपने ठीक से सुना होगा तो, एते पंचदशानर्थाः, भागवत जी के 11वें स्कंध में धन के दोष कितने हैं ये बतलाए। अरे धन का एकाध गुण भी तो बतलाना चाहिए, वो गुण कहां मिलेंगे? वो महाभारत में मिलेंगे। भागवतकार ने, वो गलत नहीं है, मुझे फिर से बतलाता हूं, आप एक गलती कर बैठेंगे नहीं तो, एते पंचदशानर्थाः, विष्णु गीत के अध्याय में भगवान वेदव्यास जी ने संपत्ति के दोष कितने हैं बताए, 15 दोष गिनाए। संपत्ति आई, संपत्ति के साथ ये सब दोष आने ही वाले हैं। तो व्यक्ति को लगेगा फिर कमाना काहे को, ऐसा लगना भी चाहिए, लेकिन वो लगना चाहिए 60-65 साल के बाद। इसलिए भागवत तब पढ़ना, अरे मुझे बहुत अधिक कमाना चाहिए, अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए, ये आपको महाभारत में उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। कुंती माता अपने पुत्रों को उपदेश करती है, क्या बात करते हैं आप, आपको उठना चाहिए, जगना चाहिए, अधिक से अधिक संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उत्तम पुरुष वो होता है जो स्वयं अधिक से अधिक संपत्ति को प्राप्त करके उसके माध्यम से लोगों को सुखी करने का प्रयास करता है। मेरे पास भी संपत्ति हो, और संपत्ति हो तो मैं लोगों को सुखी करूंगा ना, मेरी जेब में कुछ नहीं है तो उत्तराखंड में जाकर के मैं क्या सेवा कर सकता हूं, बोलो। मेरे पास होना, समर्थ रामदास स्वामी ने सुंदर शब्दों में लिखा, आपले पुरुषार्थ वैभवे सकळास सुखी करावे। मनुष्य को स्वयं पुरुषार्थ करके वैभव प्राप्त क्यों करना चाहिए, औरों के सुख के लिए करना चाहिए। इट्स वंडरफुल। इसमें दोनों बातें आ गई, लक्ष्य दे दिया लोगों को सुखी करना और साधन बतला दिया पहले तुम सुखी हो जाओ, पहले तुम वैभव कमाओ। उत्थातव्यम जागृतव्यम योग, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का विचार आपको कहां मिलेगा, केवल महाभारत में मिलेगा। काम भी पुरुषार्थ है और वो जीवन में कितना आवश्यक है, अर्थ का कितना बड़ा स्थान है। महाभारत में आपको स्थान स्थान पर इसके संवाद मिलेंगे, पांडवों के, विदुर जी के, भीष्म के, सबके, और इन सारी बातों को जाने बिना हमारी बुद्धि भी परिष्कृत नहीं होती है। इसलिए महाभारत अभ्युदय का विचार करता है, श्रीमद् भागवत निश्लेष का विचार करता है। आत्मशांति चाहिए, परमात्मा प्राप्ति चाहिए, महाभारत का वो उपयोग नहीं होगा जो श्रीमद् भागवत का होगा, पक्की बात। लेकिन समृद्धि भी चाहिए और आत्मशांति भी चाहिए, महाभारत का उपयोग होगा। अच्छा, महाभारत में आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में सर्वोच्च आश्रम माना गया है सन्यास। भागवत में सर्वोच्च आश्रम सन्यास को माना गया। महाभारत का कहते हैं गृहस्थ आश्रम सर्वोच्च आश्रम है, क्योंकि सभी के सभी तीनों आश्रम भी गृहस्थ के ऊपर अपनी उपजीविका चलाते। गृहस्थ नहीं होगा तो ब्रह्मचारी की भिक्षा कैसे होगी, वानप्रस्थ का पोषण कैसे होगा, और सन्यासी को भी भिक्षा कहां मिलेगी। सन्यासी अपने स्वयं कमा नहीं सकता और रसोई बना नहीं सकता, वो तो कहीं ना कहीं जाकर के भिक्षा ही करेगा। सर्वोपकारक क्षमाश्रम अंत्य, गृहस्थाश्रम सर्वोपकारक क्षमाश्रम है। कभी कभी लग सकता है अरे ये सन्यास लेकर के बैठे हैं ना, ये लोग बड़े महान हैं, हम लोग तो नहीं हैं। नॉट दैट, महाभारत का एक विश्वास जगाता है कि गृहस्थ में रह करके भी मनुष्य आध्यात्मिक साधना करता हुआ वही पद प्राप्त कर सकता है जो अन्य किसी को प्राप्त होगा। तुलाधार वैश्य की कथा, पतिव्रता की कथा, जाजनी की कथा, ये सारी कथाएं महाभारत में हमारी बुद्धि का यह सब भ्रम निकाल देती है। संन्यास अपवाद है, गृहस्थाश्रम यह प्रकृति है, इसको जानना चाहिए। सन्यासी कोई होंगे चाहे न भी होंगे, वो तो जिसका सद्भाग्य होगा वो होंगे, लेकिन गृहस्थ तो सब है। लेकिन महाभारतकार ने कहा गृहस्थ का अर्थ केवल विवाह कर लिया और बीबी को घर में लाया उससे गृहस्थ नहीं होता है, उसका भी कुछ धर्म है, उसके भी कुछ नियम है, और किन नियमों का पालन करने वाला वह अत्युत्तम गृहस्थ होकर के संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में साकार कर सकता। ये सारे सूत्र भागवत में संन्यास आश्रम की श्रेष्ठता, महाभारत में गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता। भागवत में आप देखेंगे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें मोक्ष की श्रेष्ठता, और महाभारत में धर्म की श्रेष्ठता। और धर्म का मुख्य अर्थ है ड्यूटी, मुझे सबसे पहले मेरा कर्म करना चाहिए। यदि मैं अपना कर्म ठीक से नहीं करता हूं, आज सारी गड़बड़ी यह है, कोई अपना कर्तव्य ठीक से करना नहीं चाहता। और अपने कर्तव्य को ठीक से करना, अपने कर्तव्य को ठीक से करते करते ही आध्यात्मिक उत्तम गति को प्राप्त करना, यह महाभारत की विशेषता है जो गीता में रिफ्लेक्ट हुई है। ध्यान रखना, गीता के विचारों का विस्तार महाभारत है और संपूर्ण महाभारत के विचारों का सार गीता है। गीता महाभारत का सार है और महाभारत गीता का विस्तार है। और इसलिए यदि गीता को भी ठीक से जानना हो तो महाभारत को ही जानना पड़ेगा। बिना महाभारत को पढ़े कोई गीता जानने का प्रयास करेगा वो गलती ही करेगा। गीता मस्ट बी इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ महाभारत ओनली। गलतियां कैसे होती मैं आपको बताता हूं। मैं नाम लेता हूं, मुझे उनके बारे में बड़ा आदर है, आचार्य विनोबा जी भावे, मैं उनको बहुत बड़ा मानता हूं, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने गीता ही में भगवद गीता का अनुवाद करते समय क्या अनुवाद किया पता है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसमें विनाशाय च दुष्कृताम इसका अनुवाद करते समय दुष्टा दूर करा भया, दुष्टों को दूर करने के लिए आता हूं। भगवान ने कहा मैं मारने के लिए आता हूं। अनुवाद किया दूर करने, क्यों? ये ज्यादा अहिंसा का प्रभाव हो गया। महाभारत के चिंतन न करने का यह परिणाम है। दुष्ट है तो वो सजा पाकर के दूर किया ही जाना चाहिए, यही महाभारत का कहेंगे। और ये देखेंगे आप, जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को सुनाते हैं उसका चार्जशीट, कर्ण ने भी यही कहा था, अर्जुन अगर मैं होगा मुझे मारो नहीं, मेरे रथ का चक्का फंसा हुआ है। अर्जुन तो बावला, वो रुकने लग गया, भगवान ने लताड़ा। हाँ लताड़ा, भगवान ने अर्जुन से कहा मूर्ख क्या कर रहे हैं, इसके जैसे पापी तो जहां मिलते हैं वहां मारने चाहिए। और फिर भगवान कर्ण की ओर देख करके जो बोलते हैं ना, हम सुनेंगे उन सारी बातों को। और फिर प्रभु ने कहा जिसने जीवन भर अधर्म किया हो उसको धर्म का नाम लेकर के बचने का अधिकार नहीं है। और कितना कितना अधर्म कर्ण ने किया ये भगवान कृष्ण की वाणी से सुनिए। हमारे देश के साहित्यिक बहुत झूठ बोले जिन्होंने कर्ण को इतना बेकार का ही बड़ा बना करके रख दिया, उन सब का अपन देखेंगे। लेकिन दृष्टिकोण क्या है महाभारत का, इसको ध्यान में लीजिएगा। हमारी सारी आइडियाज क्लियर होनी चाहिए। यदि हमारी सारी कल्पनाएं स्पष्ट नहीं है तो हमारा व्यवहार भी स्पष्ट नहीं होगा, और व्यवहार स्पष्ट नहीं होगा तो यश भी स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होगा। और हमारे मन में भी मैं ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं ऐसा ही संभ्रम रहेगा। नो, भगवान ने अर्जुन को वहां पर एक बात कही, पार्थ तुम्हें अकल नहीं आई, जीवे तुमने शास्त्र तो पढ़े लेकिन वृद्धों पर सेवा नहीं की। अभी वृद्धों पर सेवा क्या है? चाणक्य के सूत्र है, चाणक्य के 10 सूत्रों में सारी मैनेजमेंट आ गई है। सुख से मूलम धर्मः, धर्म से मूलम अर्थः, अर्थ से मूलम राज्यम, राज्य मूलम इंद्रिय निग्रहः, इंद्रिय निग्रह से मूलम वृद्धोपसेवा। चाणक्य के सूत्रों में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और वह सब कुछ चाणक्य ने लिया है महाभारत से लिया है। जान रखना, वी आर गोइंग टू द सोर्सेस ऑफ इंडियन मैनेजमेंट। मैं आपको सत्य बात बतलाता हूं, मैंने प्रबंधन शास्त्र के अनेक ग्रंथ देखे पश्चिम में, लेकिन मेरा तो एक पक्का मत बन गया। मैं विदेश में भी गया हूं ना, मैं उपदेश देने के लिए नहीं गया कभी भी, मैं तो पढ़ने के लिए जाता हूं। मेरे समय का उपयोग मैं वहां पर भी पढ़ने में करता, और वहां पर जब मैंने पढ़ा तो मुझे ध्यान में आई आजकल चार बातों में लोगों का लेखन बहुत ज्यादा हो रहा है। पहली बात प्रबंधन मैनेजमेंट, दूसरी बात रिलेशनशिप, तीसरी बात सेल्फ हेल्प, और चौथी बात लीडरशिप। दीज आर द 4 एरियाज मॉडर्न राइटर्स ऑफ राइटिंग। मैं पुस्तकें तो अंग्रेजी की पढ़ता था लेकिन मुझे मैंने बचपन में जो कुछ पढ़ा संस्कृत में वो याद आता था और मैं स्तब्ध होकर के बैठता था। मुझे ऐसा लगता था कि इन ग्रंथों में क्या है। संसार के सारे मैनेजमेंट की पुस्तक अलग अलग दो और एक महाभारत को देख लो, आपको मैनेजमेंट के लिए और कुछ देखना नहीं पड़ेगा। इतना सारा प्रबंधन शास्त्र एक महाभारत में है। सेल्फ हेल्प के लिए आप सारा कुछ पढ़ लो और एक योग वासिष्ठ को पढ़ो, आपको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। लीडरशिप के लिए समर्थ रामदास स्वामी और चाणक्य को पढ़ लो। लीडरशिप पर लिखी जाने वाली अच्छी अच्छी पुस्तकें मैंने देखी, लेकिन चाणक्य और रामदास स्वामी के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। इतना इन दोनों ने कह दिया है। और रिलेशनशिप, मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध कैसा हो, इसके बारे में कितनी पुस्तकें भी लिखी जाए, लेकिन ध्यान रखना हमारी रामकथा सर्वोपरि ग्रंथ है इसके ऊपर। इसलिए रामकथा से रिलेशनशिप सीखना, महाभारत से मैनेजमेंट सीखना, योग वासिष्ठ से सेल्फ हेल्प लेना और चाणक्य से और रामदास स्वामी से लीडरशिप के सारे सूत्र प्राप्त करना। हमारे ग्रंथों में सब कुछ भरा हुआ होने पर भी जब तक इस दृष्टिकोण से हम इन ग्रंथों को देखते नहीं, तब तक वे ग्रंथ हमारे लिए खुलते नहीं। दे आर लॉक्ड। हमारी पुरानी पद्धति थी, ग्रंथ है ना, सप्तशती का ग्रंथ है, उस ग्रंथ के आरंभ में लिखा है कि यह ग्रंथ, इस ग्रंथ को कील किया गया है, इसको कील लगाई गई है, ये खुलेगा नहीं। किसके लिए खुलेगा? फिर वो एक दूसरा अनुष्ठान जो करेगा, उत्कीलन करेगा, उसके लिए वो खुलेगा। इन ग्रंथों के उत्कीलन हमारी बुद्धि में उतरने चाहिए पहले, तब जाकर के ये ग्रंथ हम लोगों के साथ बात करते हैं। श्रीमद् भागवत में धर्म पुरुषार्थ का, श्रीमद् भागवत में मोक्ष पुरुषार्थ को सबसे बड़ा कहा गया। महाभारतकार का यह साफ कहना है कि धर्म का आलंबन लेने वाले के जीवन में मोक्ष का फूल अपने आप खिलता है। इट ब्लॉसम्स ऑटोमेटिकली। उसको धर्म में रमना चाहिए और यह भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है। हमारे यहां धर्म ही मूल पुरुषार्थ माना गया। धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्म किन्न सेव्यते। भगवान वेदव्यास जी महाराज इसी की भारत सावित्री में कहते हैं, धर्मात् अर्थश्च कामश्च, धर्म की आराधना करो, अर्थ भी आएगा, काम भी पूरा होगा और अपने आप मोक्ष का भी फूल खिलेगा। श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे चारों वर्णों में ब्राह्मण का महत्व सबसे अधिक है। महाभारत में आप देखेंगे ब्राह्मण के बराबर महत्व है क्षत्रिय का। कहीं पर भी क्षत्रिय की उपेक्षा महाभारत में नहीं है और यही वैदिक विचार है। वे ब्राह्मण और क्षत्र दोनों तेज मिलकर के ही राष्ट्र को और समाज को संवार सकते हैं। महाभारत में क्या है, प्रश्न ही गलत है। महाभारत में क्या नहीं है, यह प्रश्न पूछना चाहिए। हमारे देश का इतिहास, हमारे देश का 5000 वर्ष पूर्व का भूगोल, हमारे देश में कितनी नदियां हैं, कितने पर्वत हैं, देश में कितनी जातियां हैं, उनके आचार विचार क्या हैं, कितने तीर्थ हैं, कितनी उपासना पद्धतियां हैं, 5000 वर्ष पूर्व का उसका सारा एनसाइक्लोपीडिया ये महाभारत है। लेकिन ये एनसाइक्लोपीडिया कैसा है? इस लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। इसका अर्थ क्या है? देखो, सारे एनसाइक्लोपीडिया कोई पढ़ता ही नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया होते हैं रेफरेंस बुक्स के रूप में काम आते हैं। लाइब्रेरी में है, मुझे जब एक आध एंट्री देखनी है मैं निकाल लेता हूं, इंडेक्स देखता हूं, खोल लेता हूं, बाकी अनदेखा वैसा का वैसा रख देता हूं। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, वो ठीक है, ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन एक कल्पना करो, थोड़ा सा विचार करो। प्रसार माध्यम नहीं थे, आजकल का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तो बात ही छोड़ दो, लेकिन सामान्य भी प्रसार माध्यम नहीं थे। उस समय केरल के एक व्यक्ति को देहात में भी भगवान बद्रीनाथ का ध्यान कैसे होता, और आसाम में रहने वाले व्यक्ति को भगवान रामेश्वरम का ध्यान कैसे होता? लेकिन वो था, वो कैसे था? महाभारत उसका माध्यम बन गया। इस एक महाभारत की कथा के चलने का परिणाम ये हो गया कि सभी तीर्थों का ज्ञान सर्वत्र था, सभी नदियों का ज्ञान सर्वत्र था, सभी आचार विचारों का ज्ञान सर्वत्र था, अंग वंग कलिंग क्या है सबको पता था। और ये सारा मंदिरों में कहा जाता था, लोग सुनते थे, ज्ञान ऐसे ही फैला। इस देश के ज्ञान की ज्वाला को जीवित रखने का सबसे बड़ा कार्य इस ग्रंथ ने किया। इसने इस देश का भूगोल, इस देश का इतिहास, इस देश का समाजशास्त्र, इस देश का धर्मशास्त्र, इस देश का योगशास्त्र, इस देश के सभी शास्त्र इस एक ग्रंथ में हम लोगों को प्राप्त होते हैं। एंड दैट टू अलाइव, लोग उसको सुनते थे, ग्रहण करते थे श्रद्धा के साथ और मन में विचार करते थे, हाँ एक बार जाकर के गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अब केरल के आदमी को यह इच्छा कैसे होती बोलो? ये इच्छा तब न होगी जब गंगा जी का महात्म्य। अब गंगा जी तो एक बहुत सर्वश्रेष्ठ नदी है, अन्य ग्रंथों में भी उसका वर्णन मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ अन्य भी सारी नदियों का, सारे पर्वतों का, उनका महात्म्य लोगों को कैसे पता चलता? अच्छा एक मुख्य बात यह है, हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया ना, धन्यवाद आपने भारत कहा। ये भारत नाम इस देश को जिस महापुरुष के कारण मिला, उस महापुरुष का ध्यान कहां है हमें? ये सारा महाभारत उस भरत वंश की कथा है और उस चक्रवर्ती सम्राट श्री भरत की कथा है। हमारा देश जिसके नाम से मंडित है उसका ही इतिहास जब यदि हमें पता नहीं होगा और उसके वंश का इतिहास पता नहीं होगा तो हम अपने को भारतीय कहने में गौरव मानेंगे तो वो खोखा नहीं रह जाएगा? कम से कम इसके लिए तो महाभारत जानना चाहिए। ये और ऐसा सब कुछ इसमें है। वे वास्तव में धन्य है जिन्होंने इस ग्रंथ का आरंभ से कुछ न कुछ पान किया। विचार करने वाले लोगों को तो मैं इतना ही कह दूंगा कि आप और कुछ नहीं पढ़ेंगे ना, समझ लो। भगवत गीता तो आप जानते हैं, भगवत गीता पढ़ने से भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन मैं भगवत गीता पढ़ने से भी पहले एक दूसरा ग्रंथ पढ़ने की बात करते रहता हूं। महाभारत में विदुर नीति का एक प्रकरण आया। 8 अध्यायों में महात्मा विदुर जी ने जो उपदेश किया है, जिस घर के बालक ने उसको पढ़ा नहीं, जिस युवक ने उसको पढ़ा नहीं, ही हैज मिस्ड समथिंग इंपॉर्टेंट। सब कुछ उसमें भरा है। और बड़ी मौज की बात है, विदुर जी कहीं पर भी मोक्ष का नाम लेते नहीं, उसमें मोक्ष का विचार ही नहीं है। धर्म अर्थ और काम मनुष्य के जीवन में, उसको कमाना कैसे चाहिए, उसकी काम इच्छाएं पूर्ण कैसे करनी चाहिए, लेकिन यह सारा करते समय उसे धर्म की मर्यादाओं में कैसे रहना चाहिए और सफल कैसे होना चाहिए, उसके सारे सूत्र आपको मिलेंगे। अच्छा ऐसा है, ये तो मैंने आपको एक स्थान बतलाया, ऐसे कितने प्रकरण महाभारत में है। लोगों को गलती से लगता है कि महाभारत क्या है? कौरव पांडवों की कथा। यह केवल कौरव पांडवों की कथा नहीं है, कौरव पांडवों की कथा की सरिता इस महाभारत में ऐसे गहन अरण्यों से गुजरती है। संसुजाति जैसा प्रकरण, गंभीर प्रकरण, जहां का ज्ञान देख करके हम अवाक हो जाते हैं। सरत सुजाति इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है महाभारत का, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज को भी उसके ऊपर भाष्य लिखने का मोह हो गया। इतना बढ़िया गंभीर ज्ञान का यक्ष प्रश्न जैसे प्रकरण है, विदुर नीति जैसे प्रकरण है, आदि उपदेश के कितने कितने गहरे प्रकरण। तो ये अरण्य है, ये वन है, लेकिन केवल वन नहीं है, अच्छे अच्छे उपवन भी है, बढ़िया बढ़िया बगीचे हैं, जहां की रमणीयता अद्भुत है। नल दमयंती की कथा, सावित्री सत्यवान की कथा, ये कथाएं ऐसी है, डॉक्टर विंटरनिज ने लिखा है कि किसी भी देश के इतिहास, किसी भी देश के साहित्य की वो प्रतिभा नहीं जो ऐसा कुछ लिख सके। इतने सुरम में ये आख्यान है, कितने सारे पात्र भगवान वेदव्यास जी ने हमारे सामने ला करके रख दिए। रविन्द्रनाथ टागोर कहा करते थे, एक बार उनसे किसी ने पूछा संसार का सबसे बड़ा साहित्यिक कौन, शेक्सपियर की कालिदास। टागोर जी ने कहा नाइदर, दोनों भी नहीं, सामान्यतः ऐसे ही पूछा जाता है। टागोर जी ने कहा नहीं, मेरी दृष्टि में संसार के सबसे श्रेष्ठ साहित्यिक है भगवान वेदव्यास, और वो है केवल महाभारत के कारण। इस वाक्य का जब हम चिंतन करते, ध्यान रखना एक महान साहित्य सम्राट के द्वारा कहा गया यह वाक्य है। अब इसका जब चिंतन करते तो ध्यान में आता है कालिदास के 7 और शेक्सपियर के 36, सारे नाटकों को इकट्ठा कर लीजिए, उनके सारे पात्रों को जोड़ने पर भी उतने पात्र नहीं होते हैं जितने एक महाभारत में पात्र हैं। ये वेदव्यास जी का चित्रण है। कालिदास बायस है, उसका कोई भी नायक है वो सद्गुण संपन्न नहीं है, उसमें दोष नहीं होता, वो दोषों को दूर कर देते हैं पॉलिशिंग करके, कालिदास। शेक्सपियर के नायकों में भी दोष ही दोष। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने एक भी पात्र ऐसा नहीं दिखाया है संपूर्ण महाभारत में जिसमें गुण भी और दोष भी नहीं है, दोनों है। एक परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में पूर्णता कहीं पर भी नहीं है। हां, अच्छाई का प्रमाण कहीं ज्यादा है, कहीं बुराई का प्रमाण ज्यादा है, लेकिन जहां बुराई बहुत सारी है वहां पर भी कुछ अच्छाई है, और जहां अच्छाई बहुत है वहां पर कुछ तो भी गलती रह गई है। हमारे धर्मराज ही उसके प्रतीक है, हम देखेंगे उन सारी बातों को। इसलिए महाभारत का अध्ययन अपने जीवन का अध्ययन है, और वो अपने जीवन का अध्ययन यथार्थ को ध्यान में लेकर के भविष्य काल को सुधारने के लिए है। चलेंगे उस अध्ययन की ओर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव,
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 हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव
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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव
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 श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
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 हे नाथ
नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
सगणो विद्ययौ तूर्णम् प्रीत्या भरत सत्तमः काञ्चनम् विष्टरम् तस्मै सदस्यानुमत प्रभु। एक बात कदाचित आप लोगों के मन में आई होगी कि इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ यदि है तो फिर इसकी कथा का प्रचलन क्यों नहीं हुआ। पुराने लोगों को एक बात याद आती होगी, महाभारत की कथा का प्रचलन हमारे यहां पर नहीं था ऐसी बात नहीं। चातुर्मास्य में उद्योग पर्व को लेकर के, सभा पर्व को लेकर के, शांति पर्व को लेकर के, और चार चार महीनों तक हमारे देश के मंदिरों में ये कथाएं होती थी। गीता प्रेस और कल्याण के संस्थापक पूज्य सेठ जी जयदयाजी गोयन का अक्सर स्वर्गाश्रम में महाभारत पर ही बोला करते थे। महाभारत उनका प्रिय ग्रंथ था, लेकिन फिर भी जो रूप आज आप देख रहे हैं, 9 दिन में, 15 दिन में, 4 या 6 घंटा बैठ करके कथा का श्रवण करना, यह एक थोड़ा नया रूप तो है ही है। और यह नया होने के कारण जब मैंने इसका विचार पक्का कर लिया कि मुझे तो महाभारत की कथा करनी ही करनी है, तो टटोला तो कहीं महाभारत की आरती नहीं मिली, फिर लिख दी। करना है तो करना ही है। प्रश्न खड़ा यह हो सकता है कि ये कैसे संभव होगा? महाभारत की उपेक्षा होने का मुख्य कारण यह रहा है कि महाभारत अति विस्तृत ग्रंथ है, 1 लाख से अधिक उसके श्लोक हैं। अरे गीता के 700 श्लोक पढ़ना मुश्किल लोगों को, एक रामकथा पढ़ना ही कठिन होने लग गया आजकल, तो महाभारत का इतना अध्ययन करना और फिर वह लोग भी श्रवण करने के लिए बैठे, इस प्रकार से उनके सामने रखना कठिन तो है ही। संपूर्ण महाभारत हम देखने वाले हैं क्या? जरूर देखेंगे। बारीकी से देखने वाले हैं क्या? नहीं देखेंगे। हमारे यहां पर एक पद्धति है, उसे कहते विहंगमावलोकन। उत्तराखंड में आपदा आई और वहां पर पहुंच करके कुछ मदद करने की स्थिति में जब लोग नहीं थे, विवश भी थे, तब भी ऐसे भी स्थानों पर विमान में बैठ करके, हेलीकॉप्टर में बैठ करके, ऊपर से जाकर के अवलोकन करके कहां कहां क्या क्या है इसको देखा जा सकता था, उसके अनुसार निर्णय लिए जा सकते थे। हिमालय की कंदराओं में घुसकर के या पूरे हिमालय में पैदल चलकर के हिमालय की यात्रा करना, ये जिसके लिए संभव होगा वो करें। लेकिन यदि मेरे पास समय कम है और मेरी क्षमता भी कम है, तो मैं विमान में बैठ करके एक बार ऊपर से चक्कर काट करके आ जाऊं और प्रणाम करके आऊं, इतना तो संभव है। जो मूल में महाभारत का अध्ययन करना चाहेगा उसके लिए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मेरी एक तीव्र इच्छा यह थी कि केवल विस्तार के कारण लोगों के द्वारा यह ग्रंथ उपेक्षित रह गया, तो उसके जो अति विस्तार के प्रसंग है उन प्रसंगों को छोड़ करके, अधिक वर्णन के जो प्रसंग है उनको छोड़ करके, क्या इसके उपदेश को कथाओं के साथ साथ जोड़ करके और इसको नहीं तैयार किया जा सकता? और परमात्मा की कृपा कि वह उस प्रकार से संभव हो सका, और वो इतना अच्छा हुआ कि जब मेरे महाभारत की कथा की बात और लोगों में उसकी जो प्रतिक्रिया थी उसकी बात, हमारे देश के एक पुण्यात्मा अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज ने, जो माउंट आबू के रहे, सुनी, तो उन्होंने मेरे पास समाचार भेजे। उन्होंने मेरा अभिनंदन किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, महाभारत को पुनः जनता में लाया। फिर उन्होंने समाचार भेजे कि आप इस कथा को तो कर चुके हैं, लेकिन सात दिन की शांति पर्व की एक अलग से कथा कीजिए और वो इस ढंग से कीजिए ताकि वे सारे के सारे विचारों का अर्क लोगों को मिल जाए। केवल उनकी आज्ञा से फिर स्वर्गाश्रम में मेरे द्वारा सात दिनों में वो सारा प्रकरण शांति पर्व का कहा गया। इसी ढंग से जहां विश्वाचार्य महाराज उपदेश करते हैं और देखेंगे आप एक शांति पर्व को ठीक से जानने वाला उसे अपने पास धर्मशास्त्र के लिए अन्य किसी ग्रंथ को रखने की आवश्यकता नहीं। इतने निर्णय उसमें सब कुछ मिल जाते हैं और वह भी रंजक पद्धति से। तो हम लोग विहंगमावलोकन करते चलेंगे। महत्व का कोई प्रसंग छूटेगा नहीं, महत्वपूर्ण कोई उपदेश शेष रहेगा नहीं, इतना पक्का। अब फिर सारे पर्वतों की सूचियां, नदियों की सूचियां, राजाओं की वंशावली, ये सब सुनने की कोई उतना समय नहीं रहेगा। लेकिन ये कथा हमारे भीतर एक विलक्षण उत्साह, धर्मोत्साह निर्माण कर सकती है। चलेंगे हम उस प्रसंग में। अब श्रीमद् भागवत का श्रवण तो आप सब लोगों ने किया ही है। श्रीमद् भागवत के उपसंहार के समय हम लोग एक बात देखते भी है कि महाराज परीक्षित को तक्षक ने दंश किया, जैसा कि उनको शाप था। श्रृंगी का शमीक महर्षि के पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को, जो पांडवों के पौत्र थे, उनको शाप दिया और उस शाप के अनुसार सप्तम दिन तक्षक आकर के उनको दंश करने वाला था। उस उपलक्ष्य में गंगा जी के तट पर उन्होंने आश्रय लिया और गंगा जी के पावन तट पर ऋषि महर्षियों के मध्य में अवधूत शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना करके उनको कृतार्थ कर दिया। महाराज परीक्षित मुक्त हुए, उन्हें स्वयं ये कह दिया, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। महाराज आपने अत्यंत बड़ी कृपा मेरे ऊपर कर दी, अब मृत्यु का कोई भय मुझे रहा नहीं। महाराज भगवान सुखदेव जी महाराज के निर्गमन के पश्चात समाधिस्थ होकर के शांत बैठ गए। तक्षक ने दंश किया आदि का आदि प्रकरण है, आपने सुने हैं श्रीमद् भागवत में। अब यह सब होने के पश्चात महाराज परीक्षित के ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को अज्ञानवश भी लगा, और कुछ उकसाने वाले लोग भी होते हैं, ये उकसाने वाला एक प्रकरण बड़ा ही होता है। एक मनुष्य कुछ नहीं करना चाहता हो तो भी कुछ लोग उससे कुछ करवाना चाहते हैं अपने स्वयं के वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण। तो कुछ लोगों ने जन्मेजय को उकसाया और उन्होंने सर्पसत्र किया। सर्पसत्र में असंख्य सर्पों का, नागों का विनाश हुआ। महर्षि आस्तिक के कहने पर वह रोक दिया गया। अब ये सब जब चल रहा है उस समय भगवान वेदव्यास जी का आगमन हुआ। भगवान वेदव्यास जी का जैसे ही वहां पर आगमन हुआ, सभी को अपरिमित आह्लाद हो गया। वेदव्यास भगवान की जय। भगवान वेदव्यास महामुनि साक्षात भगवान नारायण की ज्ञान कला के प्रकट रूप, सारे के सारे लोग उठकर के खड़े हो गए। जितने भी ऋषि महर्षि वहां पर थे वे भी खड़े हो गए। श्रुत्वा तु सर्पसत्राय दीक्षितम जनमेजयम् अभ्यगच्छतु शिरविद्वान् कृष्णद्वैपायनस्तदा। जनमेजयस्तु राजर्षिर् दृष्ट्वा तम ऋषिमागतम्। महाराज जनमेजय ने जब देखा भगवान वेदव्यास जी महाराज का आगमन हुआ, सभी सदस्यों के साथ महाराज खड़े हो गए, संकेत किया, दौड़ करके तुरंत सुवर्ण का सिंहासन वहां पर लाया गया। सुवर्ण का कांचनम विस्तरम तस्मई सदस्यानुमत प्रभु। वहां के लोगों ने कहा, ना 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 ना, ये आसन नहीं चलेगा। सुवर्ण का सिंहासन, भगवान वेद व्यास जी की श्रेष्ठता सर्वमान्य है। भगवान वेद व्यास जी के चरण कमलों में राजा जन्मेजय ने और अन्य सब उपस्थित लोगों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण कमलों का पूजन किया और पूजयामास राजेन्द्र शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्रीय पद्धति से उनका विधिपूर्वक पूजन करने के उपरांत अब यहां से देखिए महाराज जन्मेजय को जो आनंद हुआ है उसमें विशेष एक कारण यह था। हाथ जोड़ करके महाराज खड़े हैं भगवान वेदव्यास जी महाराज के सामने और क्या बोल रहे हैं, शब्द बड़े सुंदर है, कुरूणाम पांडवानांच भवान प्रत्यक्ष दर्शिवान तेषां चरितमिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज। महाराज हम धन्य हैं कि आज आप हमें यहां पर उपलब्ध हो गए, हमारे सारे पूर्वजों को आप जानते रहे। रूणाम पांडवानांच भवान प्रत्यक्ष दर्शिवान, भगवान वेदव्यास जी महाराज की विशेष बात इस ग्रंथ के बारे में यह है कि भगवान वेदव्यास जी महाराज इस ग्रंथ के लेखक तो हैं, लेकिन ये लेखक तटस्थ नहीं है, वैसे त्रयस्थ नहीं है। भगवान वेदव्यास जी महाराज इस पूरे महानाट्य के एक पात्र भी है, एक इतिहास में उनका स्थान बहुत विलक्षण है। अरे धृतराष्ट्र, विदुर, पांडु, इनके सभी के जन्म से लेकर के उससे पूर्व भी और उसके पश्चात भी भगवान वेदव्यास जी महाराज इस ग्रंथ के ऊपर सर्वत्र छाए हैं। समय समय पर पांडवों को भी और कौरवों को भी आकर के योग्य बात सुझाने वाले हैं वेदव्यास जी महाराज। प्रत्यक्ष दर्शी लेखक है, वे लेखक भी है और प्रत्यक्ष इन समस्त क्रियाओं में सहभागी भी है, उनकी कुछ विशेष भूमिका भी है। इसलिए जन्मेजय ने कहा भवान प्रत्यक्ष दर्शिवान, आपने सब कुछ देखा है, इसलिए मेरे पूर्वजों का इतिहास में आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूं। इतिहास में क्या श्रवण करना चाहते हैं, किसका जन्म कैसे हुआ, उसने क्या क्या किया, फिर उसने क्या क्या किया, फिर उसने क्या क्या किया, नॉट दैट। राजा क्या सुनना चाहते हैं यहीं से देखो महाभारत की विशेषता आरंभ होती है। जन्मेजय का कहना यह है मेरे प्रपितामह सारे पांडव पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, कौरव भी पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, हमारे कुल में इस प्रकार का कलह निर्माण कैसे हो गया। देखो महाभारत को एक विशेष दृष्टि से देखने वाले हैं, आए दिन लोग ऐसा कह देते हैं महाभारत सुनने से घर में महाभारत होता है। अरे बिना सुने भी आप क्या कम कर रहे हैं, अपने घर में महाभारत जैसा कलह न होने के लिए क्या होना चाहिए, महाभारत की कथा उसके लिए है। जन्मेजय का प्रश्न उस एंगल से है, कितना अज्ञान है लोगों को महाभारत के बारे में, बिनाई कारण के द्रौपदी को दोषी ठहराते हैं महाभारत के युद्ध का, बिनाई कारण द्रौपदी के मुख में शब्द डाल देते हैं अंधे के पुत्र अंधे जैसे, एक स्थान पर ये शब्द आपको नहीं मिलेंगे, सब झूठ। सत्य बात बतलाता हूं आपको, महाभारत का अध्ययन करते समय सभी के गुण दोषों का हम लोगों को दर्शन होता है। अच्छे से अच्छे लोगों की गलती कहां है देखने मिलती है, बुरे से बुरे में क्या भलाई है देखने मिलता है। लेकिन इस दृष्टि से अध्ययन करते हुए भी मुझे आज तक दो व्यक्तियों के दोष नहीं मिले हैं। महात्मा विदुर और भगवती द्रौपदी, इट्स अ फ्लॉलेस लाइफ। संपूर्ण द्रौपदी के व्यक्तिमत्व में यह कभी हो ही नहीं सकता कि उसके मुख से ऐसे शब्द निकले। वो है ही नहीं भागवत में, नहीं महाभारत में, नहीं कहीं पर भी नहीं। लेकिन मैंने अच्छे अच्छे वक्ताओं के मुख से सुना द्रौपदी के बोलने से हो गया महाभारत। अरे वो बोली नहीं भाई, लेकिन ये सब स्पष्ट करने के लिए पुनः इस ग्रंथ के मूल की ओर जाना पड़ेगा ना। उस मूल को देखते समय दृष्टिकोण देखिए। धर्मेंद्र ने पूछा क्या है, तेषाम चरितमिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज कथम समभवद्भेदः तेषाम अक्लिष्ट कर्मणाम। अरे अच्छे लोग थे, दुर्योधन बुरा क्या, बुरा था क्या? दुर्योधन पांडवों के लिए बुरा है, वो उसका पांडवों के साथ एक अलग रिलेशन हो गया। बट एज ए पर्सन दुर्योधन बुरा है क्या? थोड़ा सोचिए। भगवान श्री कृष्ण जैसा व्यक्तिमत्व पांडवों के साथ होने पर भी, पांडव और भगवान श्री कृष्ण मिलकर के भी केवल 7 अक्षौहिणी सेना जुटा पाए हैं, जबकि दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी खड़ी है। बुरा होता तो इतने लोग उसके साथ नहीं होते। वो पांडवों का वैरी था, ये बात सत्य है। पांडवों के साथ उसने बुराई की, ये बात सत्य है। अब ये किसी का व्यक्तिगत हो गया हमारा झगड़ा, मैं बाकी क्षेत्रों में कितना भी अच्छा हूं आपके साथ तो दुश्मनी करके रहूंगा। ऐसे लोग होते हैं, अच्छा मैं बिक जाऊंगा लेकिन उसका तो सत्यानाश करूंगा, आदमी ऐसा बोलता है। औरों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ या किसी विशिष्ट घराने के साथ चिढ़ करके ऐसी बात करता है, उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। जनरली वो एकदम बुरा है क्या? उल्टा फ्रेंड मेकिंग की कला सबसे अच्छी जानते हैं दुर्योधन, हाउ टू मेक फ्रेंडशिप। सबके साथ मैत्री की है उसने, किसी के मित्र को कैसे फोड़ना इसकी कला जानते कृष्ण भगवान। ये सारी कथा स्वभावों की कथा है, प्रवृत्तियों की कहानी है। और ये प्रवृत्तियां केवल उस समय थी ऐसे नहीं, आज भी वैसी ही है। मनुष्य बदला कहां है? रथ के स्थान पर उसकी गाड़ी आ गई, एरोप्लेन में से घूमने लग गया, यहां पर बैठे बैठे अपने मोबाइल से अमेरिका में बात करने लग गया। ये सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन एक बात जरा ध्यान देकर के सोचिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर स्नेह दया परोपकार, ये सारी भावनाएं बदलिए। ये सारी प्रवृत्तियां जैसी की तैसी है, कभी किसी में कुछ अधिक कभी किसी में कुछ कम, इतना होता जाता है। मानवीय प्रवृत्तियां जैसी की तैसी है और महाभारत मानवीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण है। मानवीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण होने के कारण इन सारी प्रवृत्तियों को जानने की और उनके जंजाल में से अपना मार्ग निकालने की युक्ति सिखाने वाला ग्रंथ यह है। इसलिए जन्मेजय ने प्रश्न पूछा है, कथम समभवत भेद तेषाम अक्लिष्ट कर्मणाम। ये सारे पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे थे, उनमें भेद कैसे निर्माण हो गया, परस्पर एक दूसरे के वे अविश्वासी कैसे बन गए, यह भेद बढ़ता कैसे गया, इसको किसी ने रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, और आखिर जाकर के इसने वो भयंकर रूप कैसे ले लिया जिससे इतना बड़ा महायुद्ध हो गया। तच्च युद्धम कथम वृत्तम, वो युद्ध हो क्यों गया, व्हाई इट हैपेंड, इतनी बड़ी घटना घट गई, किसी ने रोका नहीं, समझाया नहीं। मैं इसको जानना चाहता हूं, कथम तच्च युद्धम कथम वृत्तम भूतांतकरणम महत्। जनमेजय ने कहा, आज भी उस युद्ध की मैं घटनाएं सुनता हूं तो मेरा अंतकरण व्याकुल हो जाता है। भूतांतकरणम महत्, वो कैसे हो गया, केवल आप ही इन बातों को बतला सकते हैं। ऐसे मैं आपसे सुनना चाहता हूं, शशास शिष्यमासीनम, देखो कुरुक्षेत्र का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था, लेकिन हम अपने जीवन में भी ऐसे बड़े बड़े कलह कर लेते हैं, साइज में इतने बड़े नहीं होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी वही होती है। क्वांटिटी महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध की बहुत बड़ी थी, उतना बड़ा युद्ध करना भी अपने बस की बात नहीं, उतना बड़ा युद्ध अपना हमारे जीवन में होगा नहीं, उस क्वांटिटी का नहीं लेकिन उस क्वालिटी का युद्ध हम लोग भी करते हैं, अपने घर में करते हैं, संस्थाओं में करते हैं, देश में करते हैं, जहां जाते हैं वहां करते हैं। क्यों करते हैं, वो कैसे टाले जा सकते हैं, कौन नहीं चाहेगा ऐसे कलहों को टालना। देखो एक सत्य बात जान लो, यदि महाभारत का सही ढंग से चिंतन किया गया, मनुष्य का जीवन वैर रहित हो जाएगा और कहीं पर भी उससे कलह नहीं होगा, वो किसी बात को ठीक से समझौते के ढंग से विलीन कर देगा। संघर्ष ही जीवन नहीं है, जब संघर्ष अनिवार्य हो जाता है तब तो किया ही जाना चाहिए, लेकिन वो अनिवार्य होने के पहले भी बहुत सारी स्टेप्स होती है, ये सारी स्टेप्स महाभारत में है। आप देखेंगे कैसा प्रयास विदुर जी ने किया, कैसा प्रयास भीष्म ने तो किया ही, शरद सुजात ने किया, विदुर व्यास जी ने कैसा प्रयास, युद्ध के आरंभ के पहले दिन तक प्रयास चले थे, पहले दिन तक, लेकिन स्वभाव हम लोगों का श्रवण उस ज्ञान के आलोक में हमारे आज के जीवन को देखने का होना चाहिए। संघर्ष रहित उत्तम जीवन, विजयी जीवन होगा। कथम समभवत भेद तेषाम अक्लिष्ट कर्मणाम, तच्च युद्धम कथम वृत्तम भूतांतकरणम महत्। इन सभी बातों को आप बिल्कुल समीप से जानते हैं, और यह तो बात सत्य है कि इन समस्त बातों को अत्यंत समीप से जानने वाला व्यक्तित्व वेद व्यास जी के अलावा अन्य कोई नहीं है। जनमेजय ने अत्यंत व्याकुल होकर के प्रार्थना करके कहा, आप मेरे मन की आशंकाओं को दूर कीजिए, फिर सारे प्रसंग हमें सुनाइए। भगवान वेद व्यास जी महाराज ने अत्यंत वात्सल्यमयी दृष्टि से जन्मेजय की ओर देखा। अरे वेद व्यास जी के सामने ये सारी पीढ़ियां की पीढ़ियां जन्मी है, पली है, बड़ी हुई है और नष्ट हुई है। वेद व्यास जी महाराज इन सारी पीढ़ियों के पुराण पुरुष दृष्टा है। इसलिए उस छोरे को जो कि वास्तव में उस समय का सम्राट है, लेकिन वेद व्यास जी के लिए छोरा ही है, वात्सल्य से देखा और कहा बेटे तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। ऐसा ही चिंतन व्यक्ति को जीवन में करना चाहिए। और ये सारी बात आप लोग जाने ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन सुनो ये बात मैं अपने मुख से नहीं बताऊंगा। इस विषय को लेकर के मैंने स्वयं एक सुंदर ग्रंथ निर्माण किया। यह सब कुछ मैंने लिख करके रखा, अब लिख करके गलत है, लिखवा करके रखा, क्योंकि लिखने का काम वेदव्यास जी ने नहीं किया था। जब महाभारत की रचना करने का उनके मन में पुनः पुनः भाव जागृत होने लगा तो अब इतने वेग से विचार आने लगे, एक गड़बड़ की बात है। जो अच्छे लेखक होते हैं ना वो अच्छे वक्ता नहीं होते, और जो अच्छे वक्ता होते हैं ना वो अच्छे लेखक नहीं, अच्छे वो अच्छे लेखक हो भी सकते हैं तो भी लिखने का समय कहां मिलता है, बोलो। समय नहीं फिर प्रवृत्ति नहीं होती है। वेद व्यास जी महाराज सर्वोत्तम लेखक है, देवश्री नारद जी महाराज सर्वोत्तम प्रचारक है। इसलिए वेद व्यास जी लिखते रहे और प्रचार की योजना नारद जी के पास थी। नारद जी से ज्यादा लिखना नहीं हुआ, वो भक्ति सूत्र लिखे, एक नारद संहिता लिखी बस। रात दिन घूमने वाला लिखे कैसे, असाधारण है नारद जी। देखो महाभारत को पढ़े बिना हमें बुद्धि कैसे नहीं आएगी, आपको एक बात बताता हूं नमूना। सारे संसार में सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक पूज्य व्यक्तित्व कौन सा है, यह प्रश्न महाभारत में धर्मराज ने भीष्म से पूछा। भीष्म ने कहा बेटे यही प्रश्न एक बार उग्रसेन जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। वे कृष्ण यहां पर खड़े ही है, मैं उन्होंने जो उत्तर वहां पर दिया वो उत्तर तुम्हें सुनाता हूं। और उत्तर दिया है संसार का सर्वाधिक पूज्य और लोकप्रिय व्यक्तित्व। देखो दो बातें अलग अलग हैं, जो बहुत पूज्य होते हैं वे प्रिय होते ही हो ऐसी बात नहीं है। वहां जाना, प्रणाम करना, आशीर्वाद देना, छुट्टी करना, पूज्य है, प्रिय है कि नहीं पता नहीं। जो प्रिय है उनके पूज्य होने का प्रश्न ही नहीं आता है। पूज्यत्व अलग है, प्रियत्व अलग है। सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक पूज्य व्यक्तित्व कौन सा है, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने जो महाभारत में दिया है वह देवर्षि नारद मुनि। और भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, विस्तार के साथ 20 श्लोकों में भगवान ने नारद जी के गुणों का वर्णन किया है, अद्भुत वर्णन। कैसा होना चाहिए प्रचारक धर्म का, नारद जी सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। हम लोगों ने नारद जी को क्या मान लिया, इधर की उधर, उधर की उधर। क्योंकि हमारा सारा ज्ञान आता है फिल्मों से, हमारा ज्ञान आता है उपन्यासों से, ज्ञान आना चाहिए मूल ग्रंथों से। ये बात तो सत्य है कि देवर्षि नारद जी महाराज ये भी काम करते ही है, लेकिन वो काम भी उनके प्लानिंग के अंतर्गत ही होता है, ध्यान रखना। बिकॉज हिज कॉस्मिक मैनेजर. सारे संसार को व्यवस्थित ढंग से कैसे चलाया जाए, नारद जी की दृष्टि अलग है. वेदव्यास जी महाराज विचार करते हैं, वेग से विचार मन में आने लगे. अब उतने वेग से हाथ तो चलता नहीं है, मेरे साथ भी यही डिफिकल्टी है, इसलिए मुझे पक्का अनुभव है इसका. वेदव्यास जी ने विचार किया क्या किया जाए. ग्रंथ तो भीतर से उभर उभर करके आ रहा है. ग्रंथ के निर्माण की या कविता के निर्माण की वेदना, ये प्रसूति वेदना जैसी होती है, वो बेचैन कर देती है. ब्रह्मा जी को याद किया. ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी एक काम करो, ये काम सबसे बढ़िया कर सकते हैं गणपति. अभी 11 दिन वे व्यस्त थे, नाउ ही इज फ्री. खूब लड्डू खूब मोदक मिल चुके हैं, अब उनको बुला लीजिए आप. भगवान वेदव्यास जी महाराज ने गणेश जी का आवाहन किया. वेदव्यास जी बुलावे, गणेश जी तो तुरंत आकर के पहुंच गए. उनको लगा 11 दिन बंबई में खाए, अब इधर हिमालय में मिल जाएंगे. भगवान वेदव्यास जी ने स्वागत किया, पूजन किया और कहा, बड़ी कृपा आप पधारे, कहिए. हाँ, बात ऐसी थी, एक ग्रंथ लिखने का विचार मन में बहुत तीव्रता से आ रहा है. अब हो ऐसा गया कि उस ग्रंथ के सारे विचार तो मेरे मन में उभर रहे हैं, लेकिन उतने वेग से मेरे हाथ, उतने वेग से मेरा हाथ चलता नहीं. इसलिए कोई शुद्ध लिखने वाला मिल जाए, ये सोच करके आपको याद किया, इतनी कृपा करे तो. अच्छा, ऐसा है ना, ऐरा गैरा लिखने वाला भी चलेगा नहीं. अरे आजकल शुद्ध लेखन बड़ा कठिन हो गया. एक फुलस्केप में डिक्टेट करता हूं, शुद्ध हिंदी लिखने वाला मुझे दिखा दीजिए. बड़ा कठिन. पुरानी पीढ़ी के नहीं लोगों को बोलता हूं, वे लिख सकेंगे. नई पीढ़ी, वो शुद्ध हिंदी लिखना क्या, बोलना मुश्किल, पढ़ना ही मुश्किल हो गया. ओके फाइन, इंग्लिश वो भी शुद्ध नहीं रहा, उसका भी स्पेलिंग सब गड़बड़ गड़बड़ हो गया. अब शुद्धत्व कहां रहा, ये भी एक खोजने का ही विषय हो गया. दूध में रहा कि घी में रहा कि वो कहां रहा, पानी में भी नहीं रहा. मेरा व्यास जी महाराज लिखने वाले हैं, उनको तो चाहिए कि शुद्ध लिखने वाला हो. अब गणपति से अधिक श्रेष्ठ कौन हो सकता है. इसलिए महाराज आपको याद किया. गणपति ने विचार किया, सारी काम ही की बात कर रहे हैं, लड्डू की तो बातें नहीं कर रहे हैं. तो गणेश जी ने पूछा, ठीक है ठीक है, कितना समय लगेगा. कोई भी स्टेनो पूछेगा वैसे ही पूछा, कितना समय लगेगा. वेदव्यास जी ने कहा, ज्यादा नहीं लेकिन 3 बरस तो लगेगा. गणेश जी ने विचार किया, फंस गया मैं अभी. अब बाबा जी के पास 3 बरस बैठे रहना और लिखना, 3 वर्ष लगे. त्रिभिर्वर्षै सदोत्थायि मुनिस्तद्गतमानसः, यही वर्णन है. हिमालय में बद्रिकाश्रम की उत्तर दिशा में सरस्वती के तट पर अपने आश्रम में भगवान वेदव्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखवाया है. तो गणेश जी को वहां पर उन्होंने जब बुलाया, ये बातचीत चली, और जब कह दिया कि 3 वर्ष तो लगेंगे. आजकल एग्रीमेंट करना होता है सर्विस का, तो गणेश जी ने विचार किया कि अब नहीं भी कैसे कहना, और फंसना कौन चाहता है। अच्छा पुनः बम्बई जाएंगे तो लड्डू मिलेंगे, यहां पर हिमालय में क्या मिलना है। गणेश जी ने कहा ठीक है ठीक, आप बड़े लोगों का नहीं कहने का तरीका भी बड़ा स्टाइलिश होता है। तो गणपति ने कहा कि आप जैसे संत की सेवा करने का अवसर मुझे मिले बहुत बढ़िया बात, लेकिन एक बात है, मेरे का आदत खराब है। अब लग गई क्या करना, मैं लिखना तो जानता हूं लेकिन लिखते समय रुकना नहीं जानता हूं, इसे लगातार आप बोलते रहेंगे तब तक तो मैं कितने भी वेग से लिखूंगा, लेकिन बोलते बोलते कहीं आप रुक गए, क्या करना, मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है, मैं तो कलम रख करके चला जाऊंगा। गणपति ने बड़ी युक्ति की, उनको लगा इतना बड़ा ग्रंथ लिखना है तो अरे कहीं न कहीं तो अपने विचारों का संयोजन करने के लिए लेखक को, वक्ता को, कवि को रुकना पड़ेगा। तस जैसे व्यास जी महाराज रुके कि अपन अपने उठ करके चलो, न तो नाराज करना पड़ेगा और न अटक करके रहना पड़ेगा। हाउ फाइन, वेद व्यास जी महाराज उनके भी गुरु है। पहले व्यास जी ने गंभीर मुद्रा से कहा सही बात है, टर्म्स कंडीशंस दोनों ओर से होनी चाहिए, काम मेरा अकेले का नहीं है, आपका नाम ब्रह्मा जी ने सुझाया है, इसलिए यदि ये आपकी कंडीशन है तो मेरी भी एक कंडीशन आपको माननी चाहिए। अब ब्रह्मा जी की बात तो सबको माननी पड़ेगी, ब्रह्मा इज कॉस्मिक सीईओ, उनकी बात सबको माननी पड़ती है। तो कहा फिर मेरी भी ओर से एक बात आपको ध्यान में लेनी चाहिए। गणेश जी ने कहा उनके तो काय को जाने देते हैं, अपन अपन आपस में कर लेंगे, बोलो क्या बात है। वेद व्यास जी ने कहा इतनी बात तो पक्की कि मैं जब तक बोलते रहूंगा आप लिखते जाएंगे, यदि मुझे रुकना पड़ गया तो आप कलम धर करके चले जाएंगे, मैं नाराज होऊंगा नहीं, बात पक्की, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि जो कुछ आप लिखेंगे उसका अर्थ ध्यान में लेकर के ही आपको लिखना है। अबुद्धवा मालिखत क्वचित, अबुद्धवा, जिस बात का अर्थ आपके ध्यान में नहीं आएगा वो आप नहीं लिखेंगे, आपको खाली कलम से कागज काले नहीं करने हैं, मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ करके लिखना है। गणपति को लगा इसमें क्या है, अरे मैं तो बुद्धि का होलसेल डीलर हूं, लोगों को बुद्धि चाहिए तो वो लोग मेरे पास आते। गणेश जी ने कहा ठीक ठीक ठीक, व्यास गुफा में जो बद्रीनाथ जी की उत्तर दिशा में आज भी हम लोगों को देखने मिलती है और जहां पर भगवान वेद व्यास जी का सुंदर स्थान है, सामने गणेश गुफा भी है, रहने की व्यवस्था वहां पर की थी, सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत लिखना था, ड्यूटी का टाइम इतना था। भगवान वेद व्यास जी महाराज लिखवा रहे हैं और भगवान श्री गणेश जी लिख रहे हैं अथ श्री महाभारत कथा। अब भगवान वेद व्यास जी महाराज को जब मध्यान्ह संध्या के लिए या किसी आवश्यक कार्य के लिए रुकना होता, भगवान वेद व्यास जी की एक विशेषता थी, वे तुरंत 10-5 श्लोक ऐसे कह देते कि जिनका अर्थ क्या है ये गणपति को भी सोचते बैठना पड़ता। उसको कहते हैं महाभारत की ग्रंथियां। महाभारत में आज भी कूट श्लोक है, उन श्लोकों के सारे अर्थ स्वच्छ नहीं है। गणेश जी को भी जहां पर अपनी बुद्धि को रोक करके, कलम को थमा करके सोचना पड़ा, तो उसका अर्थ इतना सीधा कैसे होगा, एकदम क्लियर कट सबका अर्थ है क्या, आज भी। मैं आपको खाली एक नमूना बतलाता हूं, इसका उत्तर कोई भी खोज ले। एक अक्षौहिणी सेना का अर्थ क्या है? ऐसे भिन्न भिन्न वर्णन और इतने अच्छा भिन्न भिन्नता भी व्यवस्थित है, लेकिन लगभग तो कहा जा सकता है, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। 18 अक्षौहिणी सेना महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से लड़ी, इतना पता है। एक अक्षौहिणी में कितने सैनिक हैं, फिर वो संख्या रथों की कितनी, घोड़ों की कितनी और हाथियों की कितनी, पदाती कितने, ये सब तो मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर उसके अंतर्गत और कुछ गड़बड़ियां हैं। एक हाथी पर कितने लोग बैठते थे, बहुत कुछ है। इस सारे नमूना बतलाया मैंने, ये लेखन चला और 3 वर्षों में यह कार्य पूर्ण हुआ। जब तक भगवान गणपति सोच लेते तब तक वेद व्यास जी महाराज फिर तैयार हो जाते। ये दिव्य ग्रंथ हम लोगों को प्राप्त हुआ। भगवान वेद व्यास जी ने कहा जन्मेजय, ये सब मैंने मुनिस्तंगतमानसः सारे कामों को दूर रख करके केवल इसी के ऊपर एकाग्रता रख करके मैंने इस ग्रंथ को निर्माण करवाया है। यह ग्रंथ मैंने मेरे एक अत्यंत उत्तम शिष्य को पढ़ाया जिनका नाम महात्मा वैशंपायन है। अब मेरी इच्छा यह है कि अरे वैशंपायन कथा करेंगे और हम दोनों मिलकर के सुनेंगे, बाकी लोग भी श्रवण करेंगे। वैशंपायन तुम्हें इस कथा को आगे बढ़ाना है। शशास शिष्यमासीनम वैशंपायनमंतिके कुरूणां पांडवानां च यथा भेदो भवत्पुरा। देखो फिर वेदव्यास जी ने वही कहा, देखो वैशंपायन, मैंने तुम्हें जो कथा पढ़ाई है, सिखाई है, जिस महाभारत का सारा ज्ञान तुम्हें प्राप्त है, उस महाभारत को इस दृष्टिकोण से कहो कि यह वैर निर्माण होने के कारण क्या थे, कि वैर क्यों बढ़ गया, इसको कहां रोका जा सकता था, क्यों रोका नहीं जा सका, इसकी अंतिम परिणति इस युद्ध में भीषण युद्ध में क्यों हुई। इस प्रकार से इस कथा का निरूपण तुम्हें करना है। गुरोर्वचनमादा तदस्मै सर्ववाचक्ष्व यन्मत्त श्रुतमानसि गुरोर्वचनमाज्ञाप्य स तु विप्रर्षि सत्तमः आचक्षे ततः सर्वम् इतिहासम् पुरातनम्। भगवान वेदव्यास जी महाराज जैसे बोलने लगे वैशंपायन उठकर के खड़े हो गए। गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त की, जी गुरुदेव कहकर के वंदन किया और उसके पश्चात एक अलग आसन के ऊपर वैशंपायन को विराजमान किया गया। महाभारत के वक्ता वैशंपायन है, महाभारत के प्रस्तोता वेदव्यास जी, लेखक के रूप में गणेश जी, उसके प्रस्तोता है महात्मा वैशंपायन और प्रधान श्रोता है राजा जनमेजय, जो पांडवों के प्रपौत्र है, परपोते परीक्षित के पुत्र है। आरंभ किया है वैशंपायन जी ने। आरंभ करने से पूर्व पुनः एक बार वेदव्यास जी को प्रणाम किया। वहां पर जितने भी पूज्य लोग थे उन सबको वैशंपायन ने प्रणाम किया। संपूज्य चद्विजान सर्वान तथा अन्यान विदुषो जनान। क्या वैशंपायन ने केवल ऋषियों को और ब्राह्मणों को प्रणाम किया? ना, उन्होंने प्रणाम किया है वहां पर बैठे हुए अन्य विद्वानों को भी। विद्या स्वयं ही पूज्य है। महर्षेर्विश्रुतस्येह सर्वलोकेषु धीमतः प्रवक्ष्यामि मतं कृत्स्नं व्यासस्यास्य महात्मनः। आरंभ में उन्होंने एक बात बताई, कितना ध्यान रखना, जैसे सागर की कोई उपमा नहीं, जैसे मेरु पर्वत की कोई उपमा नहीं, दोनों भी रत्नों से भरे हुए हैं। यथा समुद्रो भगवान यथा मेरु महागिरी उभौ ख्यातौ रत्न निधि तथा भारत मुच्यते। विशाल सागर के अंतस्थल में कितने रत्न हैं, महान मेरु पर्वत में कितने रत्न हैं, दोनों रत्नाकर कहलाए, रत्न निधि कहलाए हैं। महाभारत वैसा ही रत्न निधि है, रत्नाकर है, अत्यंत श्रेष्ठ सागर है। एक ही श्लोक में इस ग्रंथ की महिमा बतलानी हो मुझे तो मैं ये कहूंगा, वैशंपायन ने कहा, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्वचित। मनुष्य के जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जीवन के लक्ष्य हैं। इन चारों पुरुषार्थों के बारे में जो ज्ञान एक महाभारत में प्राप्त होगा वह ज्ञान अन्य किसी भी ग्रंथ में मिलेगा, जो महाभारत में नहीं होगा वो अन्यत्र भी कहीं नहीं मिलेगा। यदि हास्ति तद अन्यत्र, यहां है वही अन्यत्र मिलेगा, जो यहां है वो कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार समस्त ज्ञान का यह आकर ग्रंथ हो गया। एक बात और ध्यान में लीजिएगा, यदि आपसे किसी ने प्रश्न पूछा, एक वाक्य तो आपने सुना होगा, सबने सुना होगा, सबने बोला भी होगा, संसार में सबसे ऊंची संस्कृति भारतीय संस्कृति है, सबको मान्य है ना। ये वाक्य हमने सुना भी है, सबको मान्य भी है, हमें इसमें कोई आशंकाएं नहीं है। हमारी आने वाली अगली पीढ़ी हमारी पिछली पीढ़ियों जैसी श्रद्धावान होगी ऐसा कहा नहीं जा सकता। यदि आपके बेटे ने अथवा पोते ने प्रश्न पूछा, दादाजी सब लोग बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति से बढ़कर के और कोई संस्कृति नहीं, भारतीय संस्कृति संसार में सर्वोत्तम संस्कृति है, तो दादाजी कहेंगे हां बेटा है। पोता यहां पर रुकने वाला थोड़ा ही, पोता कहा वो तो है, मुझे आपसे ये पूछना है कि वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है। दादाजी के आगे दिक्कत, ऐसा कुछ भी होता है ना, वो कहते हैं दादी से पूछो, पिताजी से पूछा और ऐसी बात रही, जाती तरमा ने पूछ, वो मां नहीं कहते मम्मी मम्मी ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं तो भाई बोलता हूं। तो चलो वो मां के पास गया, मां से पूछा आप उत्तर क्या देंगे ये मुझे बताइए। हमारी पीढ़ी तक तो बात दूसरी थी, अब मैकॉले का रंग बड़ा गहरा चढ़ गया है, हमारी सारी संकल्पनाओं के लिए और श्रद्धा स्थानों के लिए प्रश्न खड़े करना ये फैशन हो गई, इसलिए आप ये नहीं कह सकेंगे कि बेटा मैं कहता हूं इसलिए मान लो, वो मान ले ऊपर ऊपर से मान लेगा, उसके मन में डाउट। हम उत्तर क्या देंगे? उत्तर बतलाता हूं आपको, आपने मन में कुछ सोचा होगा, लेकिन जो भी सोचा होगा वो इम्परफेक्ट है। उत्तर ये होना चाहिए, सुनो बेटा, मानव जीवन के समस्त पहलुओं का जिस व्यापकता से उस जिस गहराई से विचार भारतीय ऋषियों ने किया, उतना व्यापक और उतना गहरा विचार अन्य किसी ने भी नहीं किया। भारतीय ऋषियों का मानव जीवन का चिंतन सर्वाधिक गहरा और सर्वाधिक व्यापक होने के कारण हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। वो बेटा कहेगा याने, वो केवल एक वाक्य सुनकर के चुप नहीं, थोड़ा चुप नहीं होगा, वो पूछेगा, तो उसको समझाना ये पड़ेगा। देखो बेटा, मनुष्य के जीवन में चार लक्ष्य होते हैं। भारतीय ऋषियों ने इसका सबसे पहले प्रतिपादन किया। हम मनुष्य हैं, हमारी कुछ कामनाएं हैं कि नहीं बोलो? इच्छा नहीं है ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है। हमारे मन में इच्छाएं हैं, उन कामनाओं को हमारे ऋषियों ने एक पुरुषार्थ का स्थान दिया। कामनाओं का निषेध नहीं किया, ये क्या को चाहिए वो क्या को चाहिए, वो ऐसा नहीं कहा। हाँ, सब कुछ चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, कमाना भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, उत्तम बंगला चाहिए, गाड़ियां चाहिए, और क्या क्या चाहिए आप लोग जानते हैं, मुझे तो याद पता ही नहीं, चाहिए की लिस्ट मेरे पास नहीं है। लेकिन चाहिए वाला मामला है, ऋषियों ने इसका निषेध नहीं किया, चाहिए एक्सेप्टेड, उन्होंने उसको एक गौरवपूर्ण स्थान दे दिया, पुरुषार्थ। हाँ, मनुष्य को अपने जीवन में खूब सारी समृद्धि प्राप्त करनी ही चाहिए और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना ही चाहिए, फर्स्ट थिंग। अरे सारे संसार में आपको ऐसा कहने वाला ग्रंथ मिलेगा क्या? भगवान भगवद गीता में के धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरत ऋषभ, अर्जुन काम भी मेरा रूप है, मेरा अंश है, मेरी विभूति है, वो धर्म से विरुद्ध होना चाहिए। लेकिन कामनाओं को इस प्रकार का आदर का स्थान ऋषियों ने दिया। हां, पहला मनुष्य का पुरुषार्थ काम। अब ये सारी कामनाएं पूरी करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? अब आप लोगों को पैसे के बारे में क्या सुनाऊं? आप तो कहेंगे कि उसके बिना कुछ भी नहीं होता है, चाहिए चाहिए। मनुष्य के जीवन में धन की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, हमारे ऋषियों ने निषेध नहीं किया। शीसुप्त गाया हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावह, ये धन का सूक्त है। अभी आएंगे लक्ष्मी पूजा के दिन ही आ रहे, चाहिए अर्थ पुरुषार्थ है, कमाना चाहिए। सबके मन में विचार आएगा, महाराज ये क्या बतला रहे हैं आप, एंजॉय करना चाहिए, उसके लिए कमाना चाहिए, तो मम्मी वाले आपको पढ़ा सकते हैं, मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं है, पढ़ा सकते हैं आप, ये बतलाने के लिए ग्रंथ नहीं है। काम और अर्थ ये दोनों पुरुषार्थ जीवन में होने चाहिए, लेकिन उनका अधिष्ठान धर्म होना चाहिए कि तीसरा पुरुषार्थ है। वो क्या है धर्म? खूब कमाओ, खूब एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सामाजिक नैतिकता के कुछ नियम हैं, जिन नियमों के कारण ये समाज टिका है, जिन नियमों के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी हम उन्नति करते गए हैं, जिन नियमों के कारण सर्वत्र शांति है, सुरक्षा है और जीवन जीने का समाधान है, ये सारे नियम धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जितना चाहे कमाओ, जितना चाहे एंजॉय करो। कितना बढ़िया लगा, एक वाक्य और सुन लो, लेकिन धर्म के नियमों के अंतर्गत करो, नो प्रॉब्लम। धर्म तीसरा पुरुषार्थ। अभी चौथी बात बतलाते हैं कि भैया कितना भी कमाया, कितना भी एंजॉय किया, तो भी एक दिन सबको जाना तो भस्मांतम शरीरम, शरीर की मुट्ठी पर राख ही होनी है। इसलिए जिस प्रकार जीते समय एंजॉय किए, उसी प्रकार जाते समय भी एंजॉय करने की कला सीख लो। कैन वी एंजॉय अवर डेथ? यस, भगवान शंकराचार्य महाराज ने कहा है, प्राण प्रयाणोत्सव, मनुष्य के प्राण के प्रयाण का भी उत्सव होना चाहिए। गीता किस लिए है, जीवन भागवत किस लिए है, इनका सबका उद्देश्य यह है। हमारे संत तुकाराम महाराज नाचते नाचते गए, अमिजा तो मुझे गावा अमुसा राम राम गया। या तो साठी केला होता अट्टहास, शेवटता दिस गोड़ भाव। वे कहते हैं मेरा यह अंतिम दिन, आहा कितना आनंद, कितना सुख। 98 वर्ष के होकर के भी हम लोग वेंटिलेटर लगा करके रहना चाहते हैं, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि अभी कोई आशा ही नहीं है। आनंद से गए, नॉट जस्ट आर्ट ऑफ हैप्पीली लिविंग बट द आर्ट ऑफ हैप्पीली लीविंग द वर्ल्ड। इसके लिए मोक्ष जानना चाहिए, ये चौथा पुरुषार्थ है। दुख से ही मुक्ति हो जाए, जीते जी भी हो जाए, मरने के क्षण में भी हो जाए। मरने के पश्चात की मुक्ति नहीं, वेदांत शास्त्र इहलोक की मुक्ति। याच नहीं याच डोला, भोगिजे मोक्षाचा सोहळा। मनुष्य को अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना है वह सब कुछ इन चार पुरुषार्थों के अंतर्गत आ जाता है। ये चार वर्ग हैं। अब ये चारों पुरुषार्थ मुझे जीवन में प्राप्त हो जाए, वो ऐसे नहीं होंगे। उसके लिए जैसे मैं आज का काम करने के लिए मेरे टाइम का मैनेजमेंट करता हूं, वैसे इतनी बड़ी बड़ी चीजों को प्राप्त करने के लिए मुझे जीवन का भी प्रबंधन करना चाहिए, उसके लिए जीवन का विभाजन करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने जीवन का विभाजन चार बातों में किया, चार चरणों में किया। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। अच्छा, सारे समाज के लिए ये सारी बातें सुविधा से अल्प समय में उपलब्ध हो जानी चाहिए। देखो, प्रबंधन उसे कहते हैं जहां अल्प शक्ति लगा करके, अल्प समय लगा करके अधिक लाभ समाधान पूर्वक प्राप्त हो जाए। यह करने के लिए हमारे ऋषियों ने समाज का विभाजन चार भागों में कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह केवल डिवीजन ऑफ वर्क है, इसमें उच्च नीच की भावना नहीं है और डिवीजन ऑफ वर्क किए बिना, काम का विभाजन किए बिना हम एक समाज कैसे कहला सकते, बोलो। एक परिवार में छह व्यक्ति रहते हैं, समझो कैसे रहते हैं। हर व्यक्ति कमाने के लिए जाता है, अपना अपना कमा करके लाता है, फिर अपनी अपनी रसोई करता है और फिर अपना अपना खाता है, ऐसा करते हैं क्या? हम काम का विभाजन कर देते हैं, पिताजी कमा करके लाते हैं, मां रसोई बनाती है, बच्चे मां को भी उसके काम में सहायता करते हैं, फिर पढ़ाई के लिए भी जाते हैं। ऐसा जहां होता है उसको परिवार कहते हैं ना। यह जो इंटरडिपेंडेंस है यह पूरे समाज में निर्माण हो जाए उसको सही समाज कहते हैं। और इसलिए ज्ञान की उपलब्धि का काम सौंपा गया ब्राह्मणों को, सुरक्षा का काम सौंपा गया क्षत्रियों को, धन समृद्धि बढ़ाने का, वेल्थ ऑफ द नेशन बढ़ती जाए ये काम सौंपा गया वैश्यों को, सारी कला कल कारखाने गायन वादन ये सब काम हम लोगों ने मूर्खतावश शूद्रों को सफाई कामगार मान लिया। जितनी भी कलाएं हैं ये सारे शूद्रों के अधीन, इसलिए यह वर्ग अत्यंत वित्तवान होता था, धनाढ्य होता था। इसको भी जानिए, विस्तार अभी नहीं करूंगा। ये हो गया काम का विभाजन समाज का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। फिर कहते हैं सभी को मोक्ष की अथवा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी अपनी रुचि के अनुसार साधन चुनने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ये एक पुस्तक, ये एक साधन, ऐसा स्टीरियोटाइप काम हमारे यहां पर नहीं किया गया जबरदस्ती का। चार साधना मार्ग, ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग, कोई किसी भी मार्ग से जा सकता है। साधना नाम अनेकता, ये भारत के सनातन धर्म की विशेषता। अब देखिए उस बालक के सामने आप रखिए अथवा किसी के भी सामने रखिए, ये 16 स्तंभ है भारतीय संस्कृति के, चार पुरुषार्थ, चार आश्रम, चार वर्ण और चार साधना मार्ग। अब सारे संसार के इतिहास और भूगोल की ओर दृष्टिक्षेप करके देखिएगा, कहीं तो भी पूरे संसार में मानव जीवन का इतना गहरा, इतना व्यापक विचार किया हुआ वर्ग आपको मिलता है क्या? यू कांट फाइंड इन 16 सुदृढ़ खंभों के ऊपर भारतीय संस्कृति का यह मंदिर खड़ा रहा। इसीलिए तो सारे इतिहास में इतनी उथल पुथल होने के पश्चात भी हमारा समाज बच करके रह सका। ईरान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, ईरान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये जो कुछ बात है ना, वो ये बात है, ये ऋषियों के चिंतन की आधारशिला, समाज का ढांचा ही ऐसा बना दिया। इस ग्रैंड सोशल मैनेजमेंट, ऐसा विचार कहीं नहीं मिलेगा आपको। अध्ययन न करने वालों ने और हर अच्छे विषय की राजनीति करके उसको दूषित करने वालों ने उसके बारे में जो कुछ बोला होगा या नहीं बोला होगा आप जानते होंगे। शुद्ध विचार यह है और यह भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। अपने बच्चे को बोलो बेटा यह है सूत्र। अब सारे संसार में इतना ज्ञान और इतना उसका सुंदर विवेचन कहीं मिलता है क्या? खोजो जरा तुम्हारे गूगल पर, बच्चा उसी पर खोजता है। पक्की बात बताता हूं आपको, वो कितनी माथा पच्ची गूगल फूगल से सबसे कर ले, आखिर आकर के कहेगा नो मॉम नॉट अवेलेबल। इतना ज्ञान, इतना विस्तार से किसी समाज में विचार किया हुआ मिलेगा नहीं। लेकिन वो एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा, वो पूछेगा मां, बापूजी को भी कह सकता है, सब कुछ मां ही जानती, ऐसा नहीं है भाई, इनको भी राजी रखना पड़ता है, मुझे क्या करूं, वैसे अच्छे। तो अब ये बताओ, ये तो सब ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन इन सारे विषयों का ऊहापोह, ये सारे पहलू जिसे आप भारतीय संस्कृति के 16 स्तंभ कहती हो, वो मुझे कहां पढ़ने मिलेंगे? ऋग्वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक की लिस्ट मत देना उसको, इतने ग्रंथ है, इतने ग्रंथ है, इतने, अरे हमारे ग्रंथों की सूची पढ़ना ही मुश्किल, इतने ग्रंथ हमारे देश में, धन्य है हम लोग, दैट्स आवर वेल्थ। लेकिन ये बोलने से वो छोटा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, हम लोग भी तो ऐसे ही है, संभ्रमित तो है, क्या पढ़े, कहां जाने, कहां जाने का। विश्वास के साथ उसको उत्तर दीजिएगा, बेटा ये जो 16 पहलू है ना, ये जो 16 स्तंभ है भारतीय संस्कृति के, उनका संपूर्ण ज्ञान तुम्हें एक ग्रंथ में पढ़ना हो, कुछ मत पढ़ो, महाभारत पढ़ो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, इस गारंटीड। इसलिए भारतीय संस्कृति को भी ठीक से जानना होगा तो महाभारत के लिए कोई विकल्प नहीं है। महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। बाकी ग्रंथों में आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, मुक्ति के विषय में स्पेशलाइजेशन योग वासिष्ठ में मिल जाएगा, भक्ति के विषय में स्पेशलाइजेशन आपको भागवत में मिल जाएगा, धर्मशास्त्र के विषय में एकदम स्पेशल उपदेश मनुस्मृति में मिल जाएगा, लेकिन सब की जानकारी एक जगह केवल महाभारत में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा निरंतर ये चिंतन होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जितना जल्दी हो सके महाभारत सुन ले, उसकी दृष्टि को क्लियर करता है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके साधन क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मेरी आवश्यकताएं क्या है, उसमें प्रधान क्या है, गौण क्या है, ये सब कुछ उसको स्वच्छ हो जाता है। अब वैशंपायन ने उस दिव्य गाथा का शुभारंभ कर दिया, कृष्ण गोविंद नारायण रे,
कृष्ण गोविंद नारायण रे,
कृष्ण गोविंद नारायण रे,
कृष्ण गोविंद नारायण रे,
कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, 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 कृष्ण
राजाहं राजपुत्रश्च यया कीर्तिविश्रुतः मृगलिप्सुरहं भद्रे पाणियार्थमुपागतः अविवाह्या हि राजानो देवयानि पितुस्तव अतो दत्ताञ्च पित्रा त्वां भद्रेण विवहाम्यहम्।
जिस वंश का, जिस परंपरा का हम ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं,
वह संपूर्ण वंश चंद्रवंश कहलाता है। चंद्र के पुत्र बुध और इला, इनसे राजा पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा के आयु है, फिर उनके नहुष है। नहुष के छह पुत्र होते हैं, यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति और कृति। ऐसे उन छह पुत्रों के नाम हैं। इनमें जो दूसरे क्रमांक के पुत्र है ययाति, के सिंहासन के अधीश्वर हुए। यति नाम के जो बड़े पुत्र हैं, यति शब्द का अर्थ है सन्यासी, त्यागी। संयोग की बात यह थी कि नाम के अनुरूप वे सन्यस्त त्याग वृत्ति के ही थे, इसलिए उन्होंने स्वयं अपने पिता से पहले ही कह दिया कि मैं इस राजपद के पछड़े में पड़ना नहीं चाहता, मैं तो परमात्मा की आराधना करने के लिए ही अपने जीवन को लगाना चाहता हूं। इसलिए स्वेच्छा से वे राजा बनने के बजाय वन में जा तपस्या करना पसंद किए, इसलिए राज्य मिला है दूसरे क्रमांक के पुत्र ययाति को। कौरव पांडवों के और भगवान श्रीकृष्ण के वंश के आद्य पुरुष ययाति है। ययाति में आकर के ये दोनों परंपराएं मिलती हैं। महाराज ययाति के बड़े पुत्र जो यदु है, उनके वंश में आगे भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, और ययाति के ही जो छोटे पुत्र हैं जिनका नाम पुरु है, उनके वंश में कौरव पांडवों का जन्म होता है। ययाति की कथा वास्तव में हम सब लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाली कथा है, और भगवान श्री कृष्ण और कौरव पांडव इन सभी के आद्य पुरुष की गाथा होने के कारण थोड़ा उसका दर्शन करना आवश्यक है। महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं, राजन, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में ययाति अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। एक बार वे मृगया के लिए वन में गए, और मृगया करके लौटते समय मृगया जो की जाती थी वो पशुओं के मांस के लिए नहीं की जाती थी, राजाओं के द्वारा, ज्येष्ठ पुरुषों के द्वारा। मृगया यह हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने उत्तम क्षत्रियों के लिए आवश्यक माना हुआ व्यायाम है। युद्ध कभी कभी होते हैं, लेकिन युद्ध के लिए मेरा शरीर योग्य रखना पड़ता है रोज। उसके लिए बॉडी फिटनेस मेरा बना रहे, इसके लिए राजा को अथवा क्षत्रिय को मृगया जैसा कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि मृगया में वे सारे गुण हमें विकसित होते हैं जो युद्ध में उपयोगी होते हैं। युद्ध होगा 5-10 वर्षों में कभी तो भी, और 5-10 वर्षों तक मैं निठल लाई बैठा रहा हूं ना, तो तुम्हारे पुलिस जैसे पुलिस सब हो जाएंगे। सेना को कभी चुप नहीं बैठाया जाता, सैनिकों को युद्ध तो कभी तो भी होगा लेकिन काम रोज करना पड़ता है, जस्ट फॉर देयर बॉडी फिटनेस। एक वो उद्देश्य है, बाकी कृषकों के लिए उपयोगी यह भी एक दूसरा उद्देश्य है, मैं समझ जाता नहीं। लेकिन महाराज ययाति जब लौट रहे हैं तो एक जलाशय के पास में जल पीने के लिए पहुंचे, और कहीं से उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। यह भी ध्यान में आया कि यह किसी किशोरी कन्या की आवाज है, राजा क्षत्रिय है, आपत्ति में कोई भी हो मुझे क्या करना है यह भूमिका क्षत्रिय कभी ले नहीं सकते। लोगों के दुख दूर करने के लिए ही क्षत्रिय का जन्म है। क्षतात् किलत् त्रायत इत्युदग्रह क्षत्र से शब्दो भुवनेषु रूढ़ा, कालिदास ने क्षत्रिय की व्याख्या की है। लोगों को जो भी दुख हो वो दूर करने वाला ही आदर्श क्षत्रिय है। तो वो आपत्ति में है तो वो बुलाएगा सब जाएंगे, ये क्षत्रिय नहीं सोच सकता। महाराज ययाति जिधर से उस कन्या का क्रंदन सुनाई दे रहा था उस दिशा में आगे बढ़े। आगे गड्ढा था, वहां पर जाकर के देखा तो एक युवती कन्या बहुत अल्प वस्त्र उसके शरीर के ऊपर है और रोती हुई और कौन मुझे बाहर निकाल लेगा ऐसा विचार करती हुई खड़ी दिखाई दी। ययाति सभ्य है। अरे राजा के पुत्र विराजमान है, वो धर्मनिष्ठ पुरुष है। एक कन्या को उस अवस्था में देख करके तुरंत पीछे हट गए और अपने शरीर का दुपट्टा उन्होंने उस गड्ढे में फेंक दिया। उस कन्या ने उसको धारण कर लिया। फिर ययाति बाहर ययाति समीप आए, उसे हाथ दिया, उसका हाथ पकड़ करके उसे बाहर खींच लिया। आधार मिल गया, वो कन्या बाहर आई। ययाति ने पूछा, कौन हो तुम, यहां पर क्या चला आई, तुम अकेली यहां पर कैसे गिरी? उस कन्या ने कहा, सारी बात आपको बाद में बताऊंगी, आप महाराज ययाति है ना? अब ऐसा है, राजा को सब पहचानते हैं, राजा थोड़ी सबको पहचानेगा, इसलिए वो कन्या इनको पहचानती थी। उसने अनुमान भी किया तो उसने कहा, हां मैं राजा राजकुमार ययाति हूं, प्रज्ञा के लिए यहां पर आया था, जल पीने के लिए यहां पर मैं पहुंचा, तुम्हारा रुदन सुना, इसलिए तुम्हें मैंने बाहर निकाल लिया, अपना परिचय दे दो तो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। उस कन्या ने कहा, वो तो दूंगी, लेकिन महाराज आपने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, ये पाणी ग्रहण है, अब इस हाथ को छोड़िएगा नहीं। राजा ने सिर में एकदम हाथ लगाया, ये तो आफत ही आ गई। महाराज ऐसी ने कहा, अरे तुम कौन हो मैं जानता नहीं हूं, ये क्या बात तुम कर रही हो? उसने कहा, महाराज सारी बात मैं आपको बतलाऊंगी, लेकिन मैंने जो कहा वही होगा, मैं दैत्यों के राजा शुक्राचार्य महाराज की कन्या देवयानी हूं। ये सुनते ही महाराज ययाति ने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिए, कहा तो तुमने जो बात की वो गलत है, एक ब्राह्मण कन्या का मैं वरण कैसे कर सकता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तुम ब्राह्मण कन्या हो, हमारे शास्त्रों में प्रतिलोम विवाह मान्य नहीं है। अविवाह्या ही राजानो, अविवाह्या ही राजानो देवयानी पितुस्तव। लड़कियां चालाकी होती है, ऐसा यहां लिखा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। देवयान ने कहा, अच्छा यदि मेरे पिताजी मेरा कन्यादान करके आपको सौंप दे तो देखो चतुराई। ययाति ने कहा वो देखा जाएगा, लेकिन तुम ये क्यों कर रही हो? तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें मुझे क्यों सौंपेंगे? तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ होना चाहिए। सत्य बात यह थी कि देवयानी ये जो प्रार्थना कर रही थी वह प्रार्थना करना उसके लिए अनिवार्य था, क्योंकि देवयानी स्वयं एक शापित कन्या है, देवयानी को स्वयं एक शाप है, और वह शाप भी एक बहुत बड़े व्यक्ति का है। घटना क्या घटी थी, महाभारत का उसका वर्णन करते हैं विस्तार के साथ। देवता और दैत्यों में युद्ध तो होते ही रहता है। देवता और दैत्यों में होने वाला युद्ध संसार में निरंतर चालू रहेगा, ध्यान रखना। केवल स्वर्ग की बात नहीं है, अच्छी प्रवृत्तियां और बुरी प्रवृत्तियां, इनका संघर्ष सनातन संघर्ष है। सत्ययुग में भी था, त्रेतायुग में भी था, द्वापर युग में भी था, कलयुग में भी है, आगे भी रहेगा। जब तक सृष्टि है तब तक संघर्ष रहेगा। सब लोग एकदम सज्जन होकर के, ध्यानिष्ठ होकर के, परोपकारी बनकर के बैठ गए, ऐसे सपने दैट कॉल्ड यूटोपिया। बड़े बड़े दार्शनिक लोगों ने भी ऐसे सपने देखे, लेकिन वो सपने ही हैं। महर्षि अरविंद ने भी देखे, जय कृष्णमूर्ति ने भी देखे, और भी अनेकों ने देखे, लेकिन जहां तक हम अपने ग्रंथों का चिंतन करते हैं, कुछ लोगों के लिए संभव हो सकता है, पूरे संसार के लिए सब सज्जन हो जाए ये भी संभव नहीं, सब दुर्जन हो जाएंगे ये भी संभव नहीं। द रेशियो डिफर्स, द परसेंटेज डिफर्स, दैट्स इट। एग्जिस्टेंस इज देयर। देव दैत्यों में युद्ध होता, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य महाराज के पास संजीवनी विद्या है, तो वहां पर जो दैत्य मारे जाते हैं उनको वे जीवित कर लेते हैं। देवताओं के गुरु जी है बृहस्पति महाराज, उनके पास ये विद्या नहीं है। पहले से देखो विद्या, इन्वेंशन, इन सब में दैत्य आगे रहे। उनके गुरुजी भी वैसी थे। सीखने की बात है। परिणाम यह है देवताओं की संख्या कम होती है, दैत्यों की संख्या बढ़ती बढ़ती है। अब इसका क्या उपाय किया जाए? देवताओं ने विचार किया, भाई इसका उपाय तो एक ही है, संजीवनी विद्या किसी को सीख करके आना चाहिए। जब तक कोई संजीवनी विद्या प्राप्त करके आएगा नहीं, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे उधर पुनर्जीवित कर देते हैं शुक्राचार्य महाराज अपने शिष्यों को, वैसे हमारे भी गुरुजी करना सीख जाए। बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने यह चुनौती स्वीकार की और देवताओं को आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता मत करो, मैं स्वयं जाऊंगा, संजीवनी विद्या सीख करके आऊंगा, पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। शत्रु के राष्ट्र में जाकर के उनके रहस्यों का आकलन करके लौटना है, यह उतना सरल काम नहीं था, लेकिन कच्छ ने इसका स्वीकार किया और कच्छ स्वयं महर्षि शुक्राचार्य महाराज के पास आकर के पहुंच गया। कच्छ ने शुक्राचार्य महाराज को प्रणाम तो किया, लेकिन विशेष बात यह है कच्छ ने छिपाया कुछ नहीं, कच्छ ने बतला दिया कि मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज का पुत्र कच्छ, आपके पास विद्या सीखने के लिए आया हूं। गुरु से सही ज्ञान प्राप्त करना होगा तो श्रीमद् भागवत में भी लिखा है और यहां भी, सबसे पहले एक बात का त्याग करना पड़ता है, कपट नहीं करना, नो कंसीविंग। झूठ बोलने का परिणाम सबसे खराब होता है। इतने कष्टों से कर्ण ने विद्या प्राप्त की, लेकिन झूठ बोल करके विद्या प्राप्त की, विद्या शापित हो गई। कष्ट ने क्या किया, कष्ट ने कह दिया, छिपाया कुछ नहीं। देखो, अज्ञान अपराध नहीं होता है, लेकिन कंसीलिंग अपराध होता है। छिपाया, पता था तब भी छिपाया। और संसार में कोई भी गुरु अपने अंतरंग रहस्य तब तक देगा ही नहीं जब तक यह विश्वास नहीं हो जाए। और एक बात बताता हूं, उसमें भी कापट्य करने का परिणाम, उन्होंने रहस्य दिए तो भी आपके आकलन नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा उसका नियंत्रण करते हैं। आखिर सब आध्यात्मिक काम है, लौकिक कार्य नहीं है। गुरु शिष्यों का संबंध आध्यात्मिक होता है। कृष्ण बतला दिया, शुक्राचार्य महाराज ने क्या कहा, परंपरा कैसी थी देखो। शुक्राचार्य राजी हो गए, कहा धन्य हो बेटे, तुम्हारा स्वागत करता हूं। केवल स्वागत नहीं करता हूं, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। तुम्हारा सम्मान क्यों करता हूं, क्योंकि तुम एक महान पिता के पुत्र हो। वाक्य सुनो, कच सुस्वागतंते स्तु प्रतिगृह्णामि ते वचः, अर्चयिष्येऽहमर्चन्त्वाम् अर्चितोस्तु बृहस्पति। तुम्हारा सम्मान करने से बृहस्पति का सम्मान होता है तुम्हारे पिता का, इसलिए तुम्हारा सम्मान करता हूं। हमारी यह पद्धति रही। ब्रह्मलीन तुझे स्वामी अखंडानंद जी महाराज के एक सन्यासी शिष्य मुझे मिले, उसके पहले उनका मेरा परिचय नहीं था, लेकिन वो उनके शिष्य है, सुनते ही मैंने उठकर के उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, मैंने कहा आपके गुरुदेव का नाम सुनते ही प्रणाम करने की मेरी स्वयं की प्रारंभ से पद्धति रही। जिन महापुरुषों के कारण हमारा ज्ञान अत्यंत विलक्षण शैली से लोगों तक पहुंचा, उन्हें पूज्य अखंडानंद जी महाराज का नाम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। अब उनका सम्मान अब कैसे करेंगे, लेकिन उनका कोई शिष्य मिलता है या ऐसे कोई महापुरुष का शिष्य मिलता है, उसका सम्मान करते समय उनको याद किया जाता है। अर्चितोस्तु बृहस्पति, रहो, विद्या पढ़ना है ना, रहो। हमारे यहां का एक नियम था, कोई पढ़ने के लिए आया, एकदम उसको पढ़ने के लिए रख लिया, ऐसा नहीं होता था। रख तो लेते हैं, तुरंत नहीं पढ़ाते। रहस्यमय गोपनीय ज्ञान देना है तो पहले उसकी वृत्ति परीक्षा करनी पड़ती है। जिसको मैं ज्ञान दे रहा हूं वो उसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा ना, ये पहले जांचना पड़ता है। और इसलिए एक वाक्य आता है शास्त्रों में, संवत्सरम संवत्सथ यदि विद्यास्यामा कथयिष्यामा, एक साल रहो फिर देखेंगे। एक साल रहो तो गारंटी हो गई क्या पढ़ाने की, वो नहीं। यदि मुझे पता होगा तो मैं तुम्हें बतलाऊंगा, लेकिन साल भर तुम रहो। देखो, इंटरव्यू में आदमी के अंतरंग का सही पता नहीं चलता, इंटरव्यू तो झूठ बोलने के लिए होते हैं सब। और ये पेपर देख करके, सर्टिफिकेट देख करके तो बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि आजकल तो कैसे भी मैनेज हो जाते हैं। मनुष्य के अंतरंग का पता उसके सहवास से ही चलता है, उसको अनेक परिस्थितियों में देख करके ही चलता है। इसलिए यदि मेरा ज्ञान अत्यंत विलक्षण गोपनीय है तो मैं वो किसे दूं, इसका विवेक करना पड़ता है। संवत्सरम संवत्सरम करो, करो फिर कोई ये काम करो वो काम करो कुछ तो भी करो, बट जस्ट लिव विथ मी, दैट्स इट। फिर आश्रम है ये सेवा करो वो सेवा करो करो। एक बात और बता देता हूं, एक वर्ष यदि पूर्ण गुरु ने किसी को अपने पास रखा, नाउ इट्स कंपल्सरी फॉर हिम टू टीच, ही कांट डिनाय। यदि उसको लगता है कि ये योग्य नहीं है, उसको एक वर्ष पूरे होने के दो दिन पहले कह देना चाहिए कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। यदि एक वर्ष पूरा हो गया, क्योंकि ऐसे लोगों का टाइम खराब करने के लिए गुरु होते हैं क्या? आश्रम में काम कर, सब्जी लाओ, गाय की सेवा करो, वो करो, वो नॉट दैट, वो भी करना। लेकिन उससे अपनी योग्यता को प्रमाणित कर देने के पश्चात ये गुरु की कर्तव्यता होती थी कि वो उसको अवश्य पढ़ा, ये पद्धति थी। तो शुक्राचार्य महाराज ने कह दिया भाई रहो, देखेंगे रहो, अब रहो तो कुछ कुछ काम भी करना चाहिए। बढ़िया बढ़िया भोजन है, खाओ पियो सो जाओ, ऐसा नहीं। एक जीवन की रहस्य में बात जाननी चाहिए, कोई मुझे काम कहे चाहे न कहे, यदि मैंने 8 घंटे काम नहीं किया है तो मुझे अन्न नहीं खाना चाहिए, यह मनुष्य का कम से कम 50वें साल तक तो भी नियम ही होना चाहिए। वर्क आवर्स फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स एटलीस्ट। आजकल काम हो गया कम और एंजॉयमेंट हो गई ज्यादा, विश्राम हो गया ज्यादा। कच्छ को काम दे दिया गया गोपालन करने का, डोवे चराने के लिए कच्छ जाता है, सायंकाल में लौट करके आता है, दैत्यों को इसका पता चला, दैत्यों को संशय निर्माण हो गया, दैत्यों ने विचार किया अरे ये कच्छ यदि संजीवनी विद्या सीख करके यहां से जाता है तो ये तो हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। आज भी आप देखते हैं ना, किसी भी राष्ट्र में जाकर के वहां के एटॉमिक जो कुछ भी कागजात है या इन्फॉर्मेशन है, वहां की जो जानकारी है, वो निकालने का प्रयास दूसरे देशों की ओर से होता है। और ऐसा हमारे देश से कोई भी सीक्रेट बाहर जाए नहीं, इसके लिए हर देश सावधान रहता है, रहना भी चाहिए। तो देखते सावधान थे, तो देखते वो क्या करना चाहिए था, शुक्राचार्य महाराज से कह देते कि इसको क्यों पढ़ाते हैं, इसको यहां से निकालो। अब ध्यान दीजिए, यह कहने की हिम्मत दैत्यों की थी नहीं, क्योंकि शुक्राचार्य महाराज कोई दैत्यों के पेड़ सर्वेंट नहीं थे। गुरु में और टीचर में यह अंतर होता है। हमारे देश का गुरुत्व एक विलक्षण गुरुत्व था, वो स्वतंत्र था। आज सच्ची बात यह है कि देश में कोई गुरु ही रहा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, सारे सरकार के नौकर हो गए, और ज्ञान का क्षेत्र जब सरकार के तंत्र से चलेगा और वहां पर भी वही झमेलेबाजी होगी तो ज्ञान ज्ञान नहीं रह जाता है। कुछ कुछ ज्ञान का क्षेत्र बचा है और थोड़ा अच्छी मात्रा में हमारा न्याय का क्षेत्र भी बचा है, इसलिए थोड़ी सी आपके और मेरे जीने की संभावना है। जब ये भी नष्ट हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे ना, तब बचाने वाला कोई रहेगा नहीं, और ये नष्ट नहीं करना होगा तो अगले वर्ष आपके लिए एक अवसर है उसका उपयोग करना। महात्मा वैशंपाय वर्णन करते हैं उन पापियों ने। अच्छा, वो शुक्राचार्य को तो मना नहीं कर सकते थे, शुक्राचार्य को लताड़ करके बाहर निकालते। सच्ची बात बताता हूं आपको, देश कैसा होता था, कैसा था हमारा भी। अरे यूएन संघ ने अपने वर्णन में लिखा है और मेघालय ने भी लिखा है, इस देश में झूठ बोलने वाला आदमी मिलता नहीं। अब उल्टा बोलना पड़ेगा, देश की स्थिति क्या थी। डॉक्टर राधाकृष्णन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से, और कुछ तो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई विद्यालय के विश्वविद्यालय के क्षेत्र में, पुलिस आई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा पुलिस कैनॉट एंटर द कैंपस, दे शुड नॉट, ये हमारा विश्वविद्यालय का मामला है, छोटी सी बात है, एंड वी आर क्वाइट केपेबल, नो एंट्री फॉर द पुलिस। भारतीय संस्कृति का जीवन रस पिए हुए थे वो। वे कहते हैं मैं यहां पर वाइस चांसलर हूं और ये काम कैसे होता, यहां पर पुलिस का क्या काम है, मैं छात्रों के साथ बैठूंगा, अध्यापकों के साथ बैठूंगा, आज पुलिस के बिना तो कुछ भी नहीं होता है, ये क्या कर दिया हमने देश का। मूल बात ये ज्ञान के क्षेत्र स्वयं शासित होने चाहिए, शासन वहां पर आकर के झुके, उनका ओपिनियन ले, इसके लिए स्वतंत्र प्रज्ञ अत्यंत गौरवमय व्यक्तिमत्वों की आवश्यकता होती है। शुक्राचार्य महाराज को रोकना संभव नहीं था, इन लोगों ने क्या किया, अब दूसरा मार्ग अपनाया, गौवे लेकर के कच्छ चराने के लिए गया है, सायंकाल में वो लौटता है रोज, ये देख करके इन्होंने एक दिन कच्छ को मार डाला, गौवे वापिस आई। आप गाय को कहीं पर भी छोड़ दो वो सायंकाल में घर पर आती है, क्योंकि उसमें बुद्धि होती है। भैंस को छोड़ दो, जर्सी को छोड़ करके देखो, इसलिए देशी गाय का दूध पीने वाला है ना, उसकी बुद्धि भी अलग होगी, और जर्सी और भैंस वाला दो माता है लौट आई। तो शुक्राचार्य की कन्या देवयानी, शुक्राचार्य महाराज ने क्या किया था, कच्छ को जैसे दो चरण का काम दिया वैसे एक काम और दे दिया था, ये मेरी कन्या देवयानी है, इसको संगीत सीखना है, कच्छ संगीत में विशेषज्ञ है, इसको सुनाया करो सिखाया भी करो। तो क्या हुआ, देवयानी ने पिताजी से कहा, पिताजी ये गौवे आ गई, अंधेरा हो रहा है, कच्छ नहीं आया। शुक्राचार्य महाराज ने ध्यान लगा करके देखा और कहा बेटा इन पापियों ने कच्छ को मार डाला आज। देवयानी रोने लग गई, उनका आपस में स्नेह हो गया, अरे साथ रहते रहते कैसे प्रेम हो जाता है। एक आध कुत्ते के पिल्ले को कुछ हो गया ना तो घर के बच्चे रोने लग जाते हैं, इतना प्रेम हो जाता है मासूम। शुक्राचार्य ने कहा रो नहीं, वहीं पर बैठ करके संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, कच्छ को जहां पर फेंक दिया गया था मार करके, कच्छ वहां पर जीवित हो गया, कच्छ लौट करके आ गए, और यह प्रयोग तीन बार किया गया। एक बार तो मार करके फेंक दिया, शुक्राचार्य ने जीवित कर लिया, दूसरी बार कुछ दिनों के पश्चात कच्छ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सायंकाल में शुक्राचार्य ने फिर कहा, बेटा आज तो सारे देह के टुकड़े करके फेंक दिए इन लोगों ने, लेकिन तुम डरो नहीं। वहां पर बैठ करके उन्होंने अपना अनुष्ठान और प्रयोग किया। क्या हुआ पता है? जो टुकड़े फेंक दिए थे और कुछ उनमें से पशुओं को वन्य श्वापदों ने खा लिए थे, वे सारे टुकड़े, वे सारे कण वहां वहां से निकल करके एक जगह असेंबल हो गए। कैसा है शास्त्र? जिन प्राणियों ने उन टुकड़ों को खा लिया था, उनके पेट फट करके उसमें से वो कण निकले, और कच्छ की बॉडी, आपकी भाषा में बोलता हूं, कच्छ की बॉडी वापस असेंबल हो गई। शुक्राचार्य महाराज ने जीवित कर दिया। तीसरी बार इन दैत्य बालकों ने बड़ी विलक्षण चाल चली, कच्छ को मारा, उसको जलाया और उसकी कुछ राख तो वहां पर फेंक दी और कुछ अस्थियों को पीस करके शराब में मिला करके शुक्राचार्य महाराज को चढ़ा दी। अब दैत्यों के गुरु थे, दैत्य भी पीते थे, तो गुरुजी भी जरा। लेकिन इस घटना के बाद शुक्राचार्य महाराज ने मदिरा का त्याग किया है, ये भी ध्यान रखना। भगवान सुखदेव जी वैशंपायन वर्णन करते हैं, स्वयं शुक्राचार्य महाराज ने जब ध्यान लगा करके देखा, देवयानी आज घात हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता, इन पापियों ने कच्छ के कुछ अंश मेरे पेट तक मजरा के माध्यम से पहुंचा दिए, अब यदि मैं वो प्रयोग करूंगा तो मेरी मृत्यु होगी। अब तुम कच्छ को चाहती हो कि मुझे चाहती हो? कितनी चतुर है देवयानी। देव का पिताजी, मुझे आप ये बताइए, कच्छ को आपने संजीवनी विद्या पढ़ा दी है कि नहीं? क्या पढ़ा दी है? विद्या मैंने पढ़ा दी, लेकिन विद्या का उपयोग करने की अनुमति मैंने नहीं दी। तो देव ने कहा कि ऑन योर बिहाफ मैं दे सकती हूं कि नहीं? मेरी कन्या हो, तुम दे सकती हो। देवल ने कहा एक काम करो ना, आप प्रयोग करो, कच्छ जीवित हो जाएंगे, आप निष्प्राण हो जाएंगे, आपकी ओर से मैं कच्छ को उसको जो मंत्र सिखाए हैं प्रयोग करने की अनुमति दूंगी, और फिर वो प्रयोग करेगा तो आपको जीवित कर लेगा। देखो ये अकल स्पेशल अकल है कि नहीं? ये सब हुआ और कच्छ पुनर्जीवित हो गए। इस घटना के बाद शुक्राचार्य ने कहा, कच्छ तुम चले जाओ, विद्या तुम्हारी पूरी हो गई, लेकिन अब मुझे भरोसा नहीं है, ये पापी और नए नए हथकंडे अपना करके तुम्हारा नाश करेंगे, तुम्हें यहां पर रहना सुरक्षित नहीं है। स्वामी विवेकानंद को मारने का प्रयास किया गया था मैसूर स्टेट में, वहां के राजा ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, राजा ने उनका इतना सम्मान किया, कभी कभी ये सम्मान भी लोगों के जलन का कारण हो जाता है, इसलिए उनको मारने की योजनाएं बनी। राजा को पता चला, कहा कि स्वामी जी मैं अपनी ओर से प्रयास करूं, फिर भी कोई तो भी दुर्घटना घट जाए तो मेरे तो हृदय फट जाएंगे, आप यहां से सुरक्षित एक बार पहुंच जाइए बाहर। ऐसा करना पड़ता है, संसार ऐसा पापी है। शुक्राचार्य महाराज ने कहा तुम चले जाओ। कच्छ जब वहां से निकलना चाहता है तब देवयानी ने उसको कहा कि कच्छ मुझे साथ लेकर के चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। कच्छ ने कहा तुम मेरी गुरुदेव की कन्या हो, मेरी बहन हो, ये तुम कैसी बात करती हो? मेरा तुमसे बहुत प्रेम है, लेकिन वो प्रेम भाई बहन का प्रेम है। देवयान ने कहा नहीं। अब देवयान ने ऐसा क्यों कहा होगा, इतनी अकल कच को है, देवयानी को क्यों नहीं आई? क्योंकि दैत्य कन्याओं के साथ घूमती थी ना संगति। देवयान ने कहा चिर जैसे तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ध्यान रखना तुम्हारी विद्या असफल हो जाएगी। मैंने तीन तीन बार तुम्हें मृत्यु में से पुनर्जीवित करवाया, मेरी बात नहीं मानते। कच ने कहा मैं तुम्हारी लाख बात मान लूंगा लेकिन अधर्म करने के लिए मुझे मत कहो। देवयानी ने शाप दे दिया तुम्हारी विद्या विफल होगी। तीन तीन बार मरकर के जो विद्या प्राप्त हुई वो विफल। शुक्राचार्य महाराज ने कच से कहा बेटा तुम डरो नहीं, तुमने धर्म का पालन किया है। उसके कहने से तुम्हारी विद्या विफल हो गई तो भी तुम अपने एक शिष्य को पढ़ाओ, उसकी विद्या सफल होगी। आइडिया। कच ने देवया जी को शाप दे दिया तुम्हें ब्राह्मण पति मिलेगा नहीं। ये सारा किस्सा देवयानी ने ययाति को सुनाया। शुक्राचार्य महाराज ने भी ययाति से कहा कि जब उसके भाग्य में क्षत्रिय पति ही है और तुमसे अच्छा क्षत्रिय संसार में कोई नहीं है तो विवाह तुम्हारा हो जाए। दोनों का विवाह हुआ। शुक्राचार्य महाराज ने स्वयं कन्यादान किया, आनंदपूर्वक विवाह हुआ। आगे चल करके इसमें से और कुछ बातें घटित हुई जिनको कल देखेंगे। आज विलंब से आया इसलिए थोड़ा विलंब हो गया, कल से 7:30 बजे छोड़ी गई। गोपाल कृष्ण भगवान
जय। आरती पार्थ सारथी की चक्रधर योगेश्वर हरि की।
आरती पार्थ सारथी की चक्रधर योगेश्वर हरि की।
असुर जन धर्म नाशकारी,
असुर जन धर्म नाशकारी,
धरा पर संकट रति भारी,
धरा पर संकट रति भारी,
प्रजा संकट हुई सारी,
प्रजा संकट
संहारक के सब की चक्रधर योगेश्वर हरि
की। संहारक के सब की
आरती पार्थ सारथी की चक्रधर योगेश्वर हरि की।
आरती पार्थ सारथी की चक्रधर योगेश्वर हरि की।
मन्युमय दुर्योधन पापी,
मन्युमय दुर्योधन पापी,
शकुनि धृतराष्ट्र कुटिल दंभी,
शकुनि धृतराष्ट्र कुटिल दंभी,
कर्ण दुःशासन खल संगी,
कर्ण दुःशासन खल संगी,
पाप तरु पूर्ण विनाशन की चक्रधर योगेश्वर हरि की।
पाप तरु पूर्ण विनाशन की चक्रधर योगेश्वर हरि की।
आरती पार्थ सारथी की चक्रधर योगेश्वर हरि की।
आरती पार्थ सारथी की चक्रधर योगेश्वर हरि की।
युधिष्ठिर भीमार्जुन बंधु,
गोपाल कृष्ण भगवान की जय।